आशा करते हैं कि आपको आज सुबह की यात्रा अच्छी लगी और ये भी आशा करते हैं कि आप ज़्यादा थके हुए नहीं होंगे। लैंप नर पर्वत के ऊपर। और अब चर्चा का विषय होगा श्री बद्रीनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ जी जो स्वयं भगवान श्री नारायण हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, बद्रीनाथ धाम ये करीब करीब 10,500 फुट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। कई दिनों की यात्रा के बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस उत्तराखंड प्रांत के स्थान में। नर नारायण पर्वत जिनके बीच में अलकनंदा नदी बहती है, बद्रीनाथ का दूसरा नाम भी ये है बद्री विशाल। तो अब ये चर्चा करेंगे सबसे पहले कि भगवान श्री नारायण यहाँ बद्रीनाथ में आए ही क्यों। वैसे बताया जाता है कि एक बार नारद जी भ्रमण करते करते क्षीर सागर में पहुँचे जहाँ की भगवान नारायण निवास करते हैं। आपको तो पता ही है कि नारद जी सब जगह भ्रमण करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है नारद जी को। ब्रह्मांड के भीतर हो बाहर हो 14 भुवनों में और यहाँ तक कि भगवान के वैकुंठ धाम में भी वो आया जाया कर सकते हैं। तो एक बार वो गए क्षीर सागर में, वहाँ पे भगवान श्री विष्णु शयन कर रहे थे जैसे कि वो करते हैं सदैव क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर। और वहाँ लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। तो नारद जी वैसे तो अक्सर जाया करते थे वहाँ पर इस बार नारद जी के मन में कोई संशय उत्पन्न हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने दुख की बात भगवान से व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, समस्त जगतों के या ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और आप जिस तरह से कार्य करेंगे वैसे ही लोग भी इस कार्य को, इन कार्यों को आदर्श मानकर वैसे ही कार्य करेंगे। तो नारद जी जो बात बता रहे हैं वो सही है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् एवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कि समाज में जो नेता लोग होते हैं वो जैसे करते हैं वैसे lesser volume and lesser illumination. Okay.
रिच फॉर दिस.
तो नारद जी तो जाके वैसे सदैव भगवान की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति भावना से बात करते हैं. इस बार भी तो भक्ति भावना से ही बात कर रहे थे, परंतु वो सोच रहे थे कि हे प्रभु, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, ये संभव है कि दुनिया के लोग आपको गलत समझेंगे. अच्छा, कोई उनको हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करा के देंगे, जो हमारे विदेश से भक्त आए हैं, कौन करेंगे अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में उनके लिए, अलग से बैठ के कहीं एक जगह करनी होगी. हाँ ठीक है, तो शायद यहाँ बैठे आप इस तरफ. Alex also can go that side. तो भगवान ने ये जब बातें सुनी तो बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि मुझे ये सब चीजें त्यागनी चाहिए, मेरा ऐश्वर्य, मेरा अनंत शेष के ऊपर शयन करना, यहां तक कि लक्ष्मी देवी को भी मुझे त्याग देना चाहिए. तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मुझे तपस्या के लिए जाना चाहिए, परंतु जब तक लक्ष्मी देवी यहां पर हैं मेरे साथ, मैं जा नहीं पाऊंगा. तो किसी बहाने भगवान नारायण ने लक्ष्मी देवी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया. और जब लक्ष्मी देवी चली गई तो भगवान नारायण तपस्या करने के लिए हिमालय में आए. अब ऐसे बताया जाता है कि हिमालय के जो पहाड़ हैं वो बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा. आप देखते हैं, आप में भूगोल तो जानते ही हैं भारत का, तो हिमालय के पहाड़ जो हैं कितने लंबे हैं, चौड़ाई कितनी है उनकी. तो इसके पांच खंड या पांच भाग बताए जाते हैं. पहला भाग है नेपाल, दूसरा भाग है कूर्माचल, कूर्माचल जो आजकल कुमाऊं के नाम से जाना जाता है. सेना में कुमाऊं रेजिमेंट भी है, तो कुमाऊं शब्द काफी प्रसिद्ध है आजकल. तो ये वास्तव में कूर्माचल से आता है, कूर्माचल का ये अपभ्रंश है. तीसरा खंड है केदार खंड, और चौथा खंड है जालंधर, जिसको कोटा कांगड़ा कहते हैं, कांगड़ा का नाम भी आपने सुना होगा. और अंतिम जो खंड है वो है कश्मीर. तो भगवान नारायण हिमालय में तपस्या करने आए. जब भी कोई तपस्या की बात सोचते हैं तो हिमालय की बात सोचते हैं. तो हिमालय में ढूंढते ढूंढते वो केदार खंड में आए. जब केदार खंड में पहुंचे तो देखा कि ये कितना रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर है. यहाँ पर बहुत सारे बद्री वृक्ष हैं. बद्री अर्थात बेर, बेर तो जानते हैं सभी ने, बेर फल खाए हुए हैं. तो ये बेर फल, इसको बद्री कहते हैं संस्कृत में. तो ये बद्री के अनेक वृक्ष यहाँ फैले हुए हैं, साथ साथ में सुंदर फूल हैं और प्राकृतिक सौंदर्य अपूर्व यहाँ पर है. साथ साथ यहाँ पे अलकनंदा नदी ये भी बहती है. तो उन्होंने सोचा कि मुझे यहीं पर तपस्या करनी चाहिए. परंतु जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि शिवजी पार्वती देवी के साथ यहीं पर निवास कर रही हैं, कर रहे हैं. और तो भगवान सोचने लगे कि शिवजी ने इस जगह को अपना स्थान बना लिया, अब इतने आसानी से शिवजी इस स्थान को छोड़ने वाले नहीं है, तो क्या किया जाए, कोई युक्ति ही करनी पड़ेगी. तो भगवान नारायण ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया. और बच्चे के रूप धारण करके वो उस घर के पास में आए दरवाजे के बाहर जहाँ की शिवजी और पार्वती देवी रहा करते थे, और वहाँ ये बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और उस समय शिवजी और पार्वती देवी यहाँ पर निवास करते थे, वैसे ये स्कंद पुराण से वर्णन है कि यहाँ पे तप्त कुंड आदि बहुत पहले से था, तो शिवजी और पार्वती देवी यहाँ तपस्या करते और नियमित रूप से तप्त कुंड में स्नान करते। तो तप्त कुंड में स्नान करने के लिए जाने ही वाले थे कि पार्वती देवी ने देखा कि अरे ये बच्चा कौन है घर के बाहर और ये रो रहा है। तो पार्वती देवी का वात्सल्य भाव जागृत हुआ, उन्होंने बच्चे को उठाना चाहा, परंतु उस समय शिवजी समझ गए कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। तो उन्होंने देवी से कहा कि देखो जरा समझदार रहना, तुम्हें ये सब संसारी चीजों में क्यों पड़ना है, हम यहाँ तपस्या करने आए हैं, संसार में अटकने के लिए नहीं आए हैं। कोई रो रहा है तो तुम इतनी प्रभावित हो रही हो, देखो संसार बना ही ऐसे है, कोई हंसता है तो कोई रोता है। अब ये बच्चा है, इसके भी तो कोई माता पिता होंगे। हरे कृष्ण टॉर्च, इसके भी तो कोई माता पिता होंगे। अब जब ये माता पिता आएंगे बच्चे को ढूंढते ढूंढते तो ले लेंगे वापस, तो तुम क्यों चिंतित हो रही है, चलो हम अभी अपने स्नान के लिए आगे चले जाएं। तो पार्वती देवी खुश नहीं हुई अपने पति के इस बात को सुनकर। तो करुणा की भावना अब जागृत हो गई थी पार्वती देवी के हृदय में। तो फिर वो कहने लगी कि हे प्रभु, क्या आपके हृदय में कोई दया भावना नहीं है? अरे देखो तो सही कि ये कितना सुंदर बच्चा है, लग रहा है कि कोई है नहीं इसका देखभाल करने के लिए, ठंड के मारे रो रहा है, और आप कह रहे हो कि हमें इसे आश्रय नहीं देना चाहिए। आप तो सारे जगत को आश्रय देते हो, तो एक बच्चे को आश्रय क्यों नहीं दे सकते? तो शिव जी फिर से हंसे, कहने लगे हे देवी, ये बच्चा बड़ा चमत्कारी बच्चा है, अब देखना तुम इस बच्चे के ले बच्चे को ले लोगी तो सारी आगे चल के सारी तुम्हारी कृपा दया सब भूल जाओगी, ये हमारा सब कुछ कब्जा करके बैठ जाएगा ये बच्चा, देखो मैं अब से बोल रहा हूं। परंतु पार्वती देवी का संकल्प दृढ़ था, वो कहने लगी जो भी हो मैं इस बच्चे को आश्रय देकर ही रहूंगी। तो फिर शिव जी कहने लगे कि भगवान की योजना को तोड़ कौन सकता है। फिर वो पार्वती देवी से कहने लगे ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, परंतु बाद में तुम पछताओगे, याद रखना। तो फिर पार्वती ने उस बच्चे को गोदी में ले लिया, अंदर गई घर के, उसे बच्चे को सुला दिया और फिर शिव जी के साथ तप्त कुंड में स्नान करने के लिए चले गई। जब शिवजी और पार्वती देवी तप्त कुंड में गए तो इस बच्चे ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और शिवजी पार्वती देवी आराम से स्नान करके आए, देखते हैं कि दरवाजा बंद है और अंदर से बंद है बाहर से नहीं, इसका मतलब है कि ये बच्चा अंदर है। तो उन्होंने खोलने का प्रयास किया, लेकिन चाहे वो जितना भी प्रयास क्यों ना करें वो कवाड़ खुले ही नहीं। बार बार प्रयास करने के बाद भी ऐसे कुछ खुला नहीं। तो फिर शिवजी पार्वती देवी से कहने लगे देखो इस बच्चे की चतुराई, और ये मत समझना कि ये कोई साधारण बच्चा है। जिसको तुम साधारण बच्चा समझकर आश्रय दे रही हो या देने वाली देने की इच्छा रख रही थी, वो तो वास्तव में तो स्वयं भगवान नारायण है और वो यहाँ रहना चाहते हैं, ऐसे प्रतीत होता है कि वो यहीं पर रहना चाहते हैं, तो हमें कोई दूसरे स्थान में जाना चाहिए। तो फिर शिवजी और पार्वती देवी फिर इस स्थान को छोड़कर थोड़ी दूर पर चले गए, और जिस स्थान पर शिवजी पार्वती देवी चले गए उस स्थान का नाम बाद में चल के केदारनाथ हो गया। तो केदारनाथ गए तो नहीं, परंतु बद्रीनाथ और केदारनाथ का संबंध है। तो फिर वहां पर शिवजी और पार्वती चले गए, अब वहां पर वो तपस्या कर रहे हैं। जिस घर में या जिस स्थान में शिवजी और पार्वती देवी रहा करती थी, जहां की भगवान नारायण एक शिशु के रूप में आए, वो अभी तप्त कुंड के बिल्कुल पास में है। जब हम नदी पार करके, पुल पार करके हम बद्री विशाल मंदिर के लिए ऊपर जाते हैं, तो दाहिने ओर ये आदि केदारेश्वर मंदिर है। आप सबने देखा होगा बद्री विशाल मंदिर जाते समय। तो अगली बार जब दर्शन के लिए जाएंगे, शायद हो सकता है कल सुबह सुबह जाने, शायद नहीं भी हो पाएगा, खैर, तो वहां यही ये घटना वहीं पर हुई थी। जो आदि केदारेश्वर मंदिर है वो शिवजी और पार्वती देवी का निवास स्थान था। अब आगे यहां भगवान नारायण रहने लगे, अपने आप को भगवान ने तपस्या में स्थित कर दिया यहां पर रहकर। अब नारद जी तो सदैव भगवान के संग के लिए लालायित रहते हैं, जहां भी भगवान रहें नारद जी तो अवश्य वहां पर आते हैं। तो उन्होंने देखा कि अब भगवान यहां पर इस स्थान में केदारखंड में आए हुए हैं, बद्री काश्रम में, जो कि बद्री वृक्षों से भरा हुआ है। लेकिन आश्चर्यचकित होगा ये देखकर कि यहां पर भगवान नारायण तपस्या कर रहे हैं। भगवान किसके बाद किसको प्रसन्न करने के लिए तपस्या करेंगे, किसके ऊपर ध्यान करेंगे? सभी लोग तो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, और नारायण तो स्वयं भगवान है, भले वो किनके ऊपर ध्यान करते होंगे। तो नारद जी ने अपनी शंका व्यक्त की भगवान नारायण को, आप तो समस्त जगत के स्वामी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक आप हैं, तो आप खुद तपस्या में स्थित होकर ध्यान में बैठे हैं, तो क्या कारण है इसका, किसके ऊपर आप ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान नारायण ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, मैं तो अपने ऊपर ही ध्यान कर रहा हूं। वैसे तो काफी छोटा सा एक प्रवचन दिया भगवान नारायण ने, लेकिन इसका सार यही है कि भगवान कहना चाहते थे कि मैं अपने ऊपर ही ध्यान दे रहा हूं। वैसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ का जीवन बिता रहे थे, तो वो प्रातः काल में उठ जाते, स्नान आदि करके फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते, और सुबह सुबह जो है वो ध्यान में बैठ जाते। तो प्रभुपाद जी अपने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण बुक में कहते हैं कि कृष्ण जो है परम सत्य है, वो भले किनके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, वो तो अपने ही ऊपर ध्यान कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने ऊपर ध्यान कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपने ऊपर बैठकर ध्यान करें सोहम कह के, तत्वमसीद सोहम। जब भगवान अपने ऊपर ध्यान करते हैं, इसका तात्पर्य है कि हमें भी भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए, न कि हमारे अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए। वैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि शिवजी ध्यान में बैठते हैं, तो इससे पता चल सकता है कि वो परम नहीं है, और शिव जी का ये एक नित्य, उनकी नित्य मुद्रा है ये, या नित्य स्थान है। परंतु जहां तक भगवान श्री कृष्ण की बात है या भगवान श्री नारायण की बात है, ये इनका नित्य रूप नहीं है। ये विशेष कोई लीला के लिए वो ऐसे कार्य करते हैं, परंतु भगवान शिव जी के साथ ऐसा नहीं है, वो तो सदैव ऐसे ही स्थित रहते हैं ध्यान में। सो इसे अंतर हम जान सकते हैं। तो खैर, तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए इस उत्तर को सुन के। फिर उन्होंने सोचा, चलो भगवान यहाँ पे निवास कर रहे हैं इस बहुत ही रमणीय स्थान में, और स्वयं भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ रहकर उनकी सेवा करूंगा। तो भगवान फिर यहाँ रह जाते हैं, नारद जी यहाँ रह जाते हैं इसी जगह, और भगवान की पूजा अर्चना करने की इच्छा रखते हैं। और फिर उन्होंने भगवान से निवेदन किया, ऐसे नारद पुराण में और वराह पुराण में बताया गया है कि नारद जी ने भगवान से निवेदन किया कि आप हमें आपके अर्चा विग्रह की सेवा की विधि का प्रशिक्षण दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो फिर भगवान नारायण ने पंचरात्रि विधि या पंचरात्रि पद्धति, पूजा पद्धति का ज्ञान नारद जी को दिया। तो ये पंचरात्रि का शास्त्र है, अनेक हैं। तो नारद जी ने एक शास्त्र भी लिखा, नारद पंचरात्र, जो हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत जो भी वैष्णव हैं उनकी जो पूजा अर्चा है वो पंचरात्रि विधियों के अनुसार होते हैं। तो खैर, ऐसे पंचरात्रि विधि का विषय भी काफी लंबा है। पांच रात्रि में ये उपदेश मिला, परंतु हमारे पास पांच रात नहीं है, इसलिए हम इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। इतना कहना काफी है इस समय कि नारद जी पंचरात्रि पद्धति को सीख गए स्वयं भगवान जी से। फिर आगे जैसे जैसे यहां भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में बैठ के केदार खंड में तपस्या कर रहे थे, उधर क्षीर सागर में लक्ष्मी देवी नाग कन्याओं के पास थोड़ी देर रह के वापस आ गई, और आकर क्या देखती है कि शेष शैया खाली है, मेरे पति श्रीमन नारायण है ही नहीं, कहाँ चले गए। बहुत दुखी हो गई और दुख के मारे विवल होकर इधर उधर ढूंढने लगी, सारे ब्रह्मांड में ढूंढा, अंततः वो हिमालय में आई, यहां पर केदार खंड में आई, और फिर देखा कि यहां पर केदार खंड में बद्रिक आश्रम में भगवान नारायण उनके पति तपस्या कर रहे हैं, और परवाह नहीं कर रहे हैं कि कड़ी धूप है या वर्षा है या बर्फ है, तूफान है, आंधी है, ये सारे प्राकृतिक जो आपत्तियां हैं इनको आप सहन करते हुए बद्री नारायण या भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे। तो ये सहन नहीं हुआ लक्ष्मी देवी को कि मेरे पति इतना कष्ट उठा रहे हैं। तो लक्ष्मी देवी ने भी सोचा कि मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि ये जो प्रकृति के तरह तरह के जो कष्ट हैं उनको झेले नहीं। तो फिर उन्होंने एक बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और छाया प्रदान की अपने पति भगवान नारायण को। फिर भगवान नारायण उस वृक्ष के नीचे बैठ के बड़े अच्छे ढंग से आनंद से तपस्या के कार्य में आगे चलते रहे। तो क्योंकि लक्ष्मी जी ने बद्री का रूप लिया था और भगवान श्री कृष्ण उनके पति हैं, तो बद्री नाथ हो गए, तो बद्री के नाथ। दूसरा है कि क्योंकि अपने आप को भगवान ने स्थित किया अनेक बद्री वृक्षों के झुंड में, इसलिए उनका नाम पड़ा बद्री नाथ। और इसके लिए, इस बद्री वृक्ष के लिए फिर ये इस क्षेत्र का नाम हुआ है बद्री क्षेत्र या बद्री वन। अनेक पुराणों में वर्णन किया गया है कि इस स्थान का नाम बद्री वन है। आज सुबह हम ये बता रहे थे कि पांडव गण जब वनवास में थे तो वो यहाँ बद्री आश्रम में आए थे। तो महाभारत के वन पर्व में, महाभारत में अनेक पर्व हैं, तो उनका एक पर्व है वन पर्व। तो इस वन पर्व में बताया गया है कि जब पांडव गण यहाँ पे आए थे तो बहुत मोहित हो गए यहाँ के सौंदर्य को देखकर, और विशेष करके यहाँ के अनेक सुंदर बद्री वृक्षों को देखकर। और उन्होंने वैसे एक गोल तने वाली बद्री वृक्ष को भी देखा और ये भी जान लिया कि इसकी छाया कितनी शीतल है। तो वही वृक्ष लक्ष्मी देवी साक्षात, तो पंच पांडव जब यहाँ आए थे द्रौपदी के साथ में तो उन्होंने भी ऐसे बद्री वृक्ष देखे। तो ये प्रमाण है कि उस समय अनेक बद्री वृक्ष यहाँ हुआ करते थे, इसलिए इस जगह के नाम भी था बद्री क्षेत्र या बद्री वन। आज भले बद्री वृक्ष हो या न हो, परंतु पर्याप्त प्रमाण है पुराणों में कि उस समय तो अवश्य यहाँ बद्री के वृक्ष हुआ करते थे। और क्योंकि श्रीमती लक्ष्मी देवी बद्री वृक्ष में निवास करती हैं, इसलिए बद्री वृक्ष भगवान नारायण को बहुत पसंद है। अब लक्ष्मी देवी जब यहाँ पर आ गईं, तो उन्होंने भगवान से एक निवेदन किया कि हे प्रभु, अभी आप केवल योग ध्यान मुद्रा में स्थित हैं, परंतु अनेक लोग ऐसे आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो आप कृपया एक श्रृंगारक रूप स्वीकार कीजिए जिसमें कि मनुष्य भी आपकी सेवा कर सके, आपका श्रृंगार आदि कर सके, अर्थात एक विग्रह का रूप आप धारण कर लीजिए। तो जगत के कल्याण के लिए, विशेष करके मनुष्य समाज के कल्याण के लिए श्रीमन बद्रीनाथ ने सोचा या बद्री नारायण ने सोचा कि ठीक है, तथास्तु, वैसे ही किया जाए, परंतु मेरे तीन शर्त हैं। तो भगवान नारायण के कौन से तीन शर्त थे? पहली बात, उन्होंने कहा कि ये बद्रिक आश्रम जो है ये केवल एक तपोभूमि ही सदैव रहनी चाहिए, यहाँ पे तपस्या के बिना और दूसरा कोई कार्य नहीं होना चाहिए, यहाँ काम वासनाएं प्रवेश, किसी के मन में प्रवेश भी नहीं करने चाहिए, किसी भी तरह की भौतिक इच्छा या कामना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में कि यहाँ पे योग ध्यान मुद्रा और श्रृंगारक मुद्रा अर्थात अर्चा विग्रह की रूप में, दोनों में ही मेरी अर्चा, मेरी सेवा होनी चाहिए। और तीसरा शर्त ये था कि वैसे जब मैं मेरे विग्रह के रूप में रहूंगा तो उस समय लक्ष्मी देवी या तुम, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी से बात कर रहे थे, तुम मेरे दाहिने ओर रहोगी, और जब मैं योग ध्यान मुद्रा में रहूंगा तो तुम मेरी बाएं ओर रहोगी। अब इसका तात्पर्य ये है कि जब कोई भगवान के बाएं ओर रहते हैं, इसका मतलब है कि वो वामांगी हैं, उनके पत्नी हैं। जैसे आप देखेंगे कि लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां जहां होती हैं तो नारायण भगवान के बाएं हाथ में लक्ष्मी देवी रहती हैं। हम जब प्रदक्षिणा करते हैं तो किस तरफ से करते हैं? जिनकी हम प्रदक्षिणा करते हैं उनको हमारे कौन से तरफ रखते हैं? दाहिनी ओर। क्योंकि कोई सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, जब उनकी प्रदक्षिणा आदि करनी होती है तो उनको अपना दायां कंधा दिखाना चाहिए प्रदक्षिणा करते समय। तो लेकिन नमस्कार करते समय बात दूसरी होती है। हम जब हमारे संस्था में, हम क्या विधि है कि भगवान को नमस्कार करते समय, दंडवत करते समय हम बाएं ओर अपना दिखाते हैं भगवान को। और ऐसे शास्त्र में कथा है कि जब देवी देवताओं को की उपासना करते हैं तो अपने दाहिनी ओर से करना चाहिए, भगवान को बाएं ओर से प्रणाम करते हैं और देवी देवताओं को दाहिने ओर से, और जब गुरु होते हैं तो उनको सीधे करना चाहिए प्रणाम ऐसे। परंतु मंदिरों में ऐसी व्यवस्था ही है कि कभी कभी ये संभव नहीं होता, तो जैसे भी हो प्रणाम तो अवश्य कर लेना चाहिए। परंतु प्रदक्षिणा की बात जब आती है या रुकने की बात होती है, तो जो सम्माननीय व्यक्ति रहते हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति रहते हैं, वो हमारे दाहिने ओर होने चाहिए। जैसे जब श्री कृष्ण बलराम की मूर्ति है तो श्री कृष्ण भगवान बलराम जी के बाएं ओर हैं या दाएं ओर हैं? बलराम जी के बाएं हाथ की ओर या दाएं हाथ की ओर? बाएं हाथ की ओर, क्योंकि बलराम जी श्री कृष्ण से वरिष्ठ हैं, इसलिए श्री कृष्ण बलराम जी के अपने दाहिने भाग में रखते हैं। तो यहां पर यद्यपि लक्ष्मी देवी को वैसे बाएं तरफ होना चाहिए भगवान के, लेकिन यहाँ पे दाहिनी तरफ है, ये साबित करने के लिए कि वास्तव में यहाँ पर ये तपोभूमि है और ये लक्ष्मी देवी भी शक्ति हैं, पत्नी रूप में नहीं है। इसलिए यहाँ एक विधि है कि जो आज तक ये तीनों शर्त पालन किए जाते हैं, और ये विधि है कि यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं रावल, जिनको रावल कहते हैं, कि ऐसी आवश्यकता है कि वो एक ब्रह्मचारी रहे, और यदि वो विवाह कर ले तो उसे अपनी रावल की गद्दी त्याग देनी पड़ती है, फिर दूसरा कोई व्यक्ति आके वो सेवा करता है। तो खैर, फिर इसके बाद बद्रीनाथ यहां प्रकट हो गए। आगे चल के अब ये हम चर्चा करेंगे कि बद्रीनाथ जी का नाम बद्री विशाल क्यों हुआ। वैसे विशाला इस पुरी को बद्री पुरी भी कहते हैं, तो ये बद्रीपुरी का नाम विशालापुरी भी है। तो विशालापुरी ऐसे नाम क्यों पड़ा इसका? वैसे पुराणों में इसके लिए दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण तो ये है जो स्कंद पुराण में बताया गया है कि क्योंकि इस स्थान में, इस पुरी में, पुरी मतलब एक शहर या गांव, इसमें अनेक देवतागण रहते हैं, ऋषि रहते हैं, और यहाँ पे अनेक तीर्थ हैं, इसलिए इस स्थान को विशाल कहना चाहिए, तो इस जगह का नाम हो गया है विशालापुरी। परंतु दूसरा कारण भी दिया हुआ है वराह पुराण में। सूर्यवंश में एक राजा थे जिनका नाम था विशाल, रामायण में भी इनका वर्णन आता है, विशाल राजा। तो हुआ ये कि एक बार युद्ध हुआ उनके शत्रु के साथ और वो हार गए और उनका राज्य उनसे छीन लिया गया, जो भी कुछ उनके पास था वो सब छीन लिया गया। तो ऐसे अवस्था में वो बहुत ही दुखी हो गए, और दुख से थोड़ी राहत प्राप्त करने के लिए वो सोच रहे थे कि क्या किया जाए। फिर वो तपस्या करने चले गए और कहां पर आए, इस गंधमादन पर्वत में आए। और जैसे आज सुबह हम बता रहे थे कि गंधमादन पर्वत ये प्राचीन पौराणिक नाम है नर नारायण पर्वतों के लिए। और ये गंधमादन नाम पड़ा क्यों? क्यों ऐसे बताया जाता है कि इस गंधमादन पर्वत का हर एक घास का तिनका, हर एक फूल, हर एक पत्ता इत्यादि का इतना मादक गंध है, सुगंध है, कि ये बहुत विचित्र है, अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए इस क्षेत्र का, इस पर्वत का नाम पड़ गया गंधमादन पर्वत। तो खैर, यहाँ पे विशाल राजा आए, बहुत तपस्या करने लगे। थोड़े समय के बाद भगवान श्री नारायण प्रसन्न होकर उनके सामने आए। उन्होंने राजा विशाल से पूछा कि हे राजन, मैं तुम्हारे तपस्या को देखकर बहुत प्रसन्न हो चुका हूं, तो तुम बताओ कि मैं क्या वरदान दे सकता हूं तुम्हें। तो राजा विशाल ने बड़े नम्रता से, विनीत भाव से स्वागत अर्ज आदि तो किया भगवान का, और फिर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मेरा राज्य मुझे लौटा दीजिए। तो भगवान नारायण बोले, अरे राजन, ये क्या बोल रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यहां जो बद्रिक आश्रम में आता है वो वापस कभी जाता नहीं है। ये तपोभूमि है। ये विरला ही किसी को एक अवसर मिलता है यहां आके तपस्या करने का। तो ये राज प्राप्त करने की बात भूल जाओ और यहीं पर अपने आप को तपस्या में स्थित कर लो। तो राजा विशाल ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, ये मेरे लिए संभव नहीं है। राज्य प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र है कि बस मैं आपसे यही एक वरदान चाहता हूं, मुझे आप राज ही दीजिए। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। भगवान तो थोड़ी जबरदस्ती करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं इसलिए मैं तुम्हारा नाम मेरे पुरी से जोड़ दूंगा, बल्कि मेरे पुरी का नाम लेते समय तुम्हारा नाम पहले होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि मेरे नाम के सामने भी, मेरे नाम के साथ भी तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। तो मेरी पुरी और स्वयं मैं तुम्हारे नाम से हम दोनों के नाम में तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इस पुरी का नाम हो गया बद्री विशालपुरी या विशालापुरी, और भगवान का नाम हुआ, पहले बद्री नारायण थे, बद्री नाथ थे, और अब हो गए बद्री विशाल। वैसे बद्री नारायण, बद्री नाथ, बद्री विशाल एक ही है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के ऊपर क्या लगा होता है, बद्री विशाल मंदिर। तो ये राजा विशाल अभी अमर हो गए क्योंकि उनका नाम अभी भगवान के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। देखिए, भगवान के साथ किसी न किसी तरह से नाम को जोड़ने से व्यक्ति अमर हो ही जाता है। भगवान का संबंध न हो तो व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों न पड़े करे, कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो, फिर वो अमर नहीं रहेगा। उसका नाम आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे। और कोई व्यक्ति भगवान के साथ यदि गहरा संबंध रखता है, भले वो द्वेष में भी क्यों न हो, फिर भी उसका नाम अमर हो जाता है। जैसे कि हिरण्यकशिपु, हम भगवान को याद करते हैं, नरसिंहदेव को याद करते हैं, प्रहलाद को याद करते हैं, और अवश्य हिरण्यकशिपु को भी याद करते हैं। जब प्रहलाद का नाम आता है तो हिरण्यकश्यप का नाम भी आना ही चाहिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हल्लाद दायिने हिरण्यकशिपु वक्षः शिलाटंक नखालये। तो हिरण्यकशिपु का नाम तो लेते प्रतिदिन हम लेते हैं, क्योंकि भगवान के साथ कुछ संबंध था, बड़े द्वेष में घृणा में क्यों ना हो। तो घृणा में और द्वेष में भी यदि कोई भगवान के साथ संबंध रखता है तो उसका नाम अमर हो जाता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए कि जो बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की निरंतर सेवा करता है, भगवान के शरणागत होकर अधीन हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य कैसे होगा। तो भले राजा विशाल के मन में भौतिक कामनाएं थीं, राजा कहते थे कि आप मुझे राज लौटा दोगे तो मैं अनेक विधिवत यज्ञों के द्वारा आपकी मैं पूजा करूंगा और थोड़ा राज्य सुख भी भोग लूंगा। तो राजा विशाल के ये लक्षण शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने, जो कि भक्त वत्सल है, उनको ऐसा एक ऊंचा स्तर दे दिया कि उनका नाम सदैव अपने नाम से भगवान ने जुड़वा लिया। तो इस बद्रीनाथ तीर्थ की महिमा अपार है। शास्त्रों में देखा जाता है कि प्रत्येक तीर्थ स्थान की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यही तीर्थ स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी तीर्थ स्थान में देखिए आप, ऐसे गुणगान किया जाता है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से हम जानते हैं कि वृंदावन और ब्रजभूमि सबसे श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रूप गोस्वामी पाद में तो बतलाया है कि ब्रजभूमि में भी राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी ऐसे अन्य जो धाम है जैसे बद्रीनाथ, ये भी बहुत विशेष है। स्कंद पुराण में बताया गया है, बहुनी संत तीर्थानी दिवी भूमौ रसासु च बदरी सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। बहुनि संति तीर्थानि, बहुत सारे तीर्थ हैं। कहां पर हैं? दिवी मतलब स्वर्गलोक में, भूमौ पृथ्वी में, रसाश्च मतलब रसातल आदि निम्न श्रेणी के लोकों में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं। परंतु बदरी सदृशम तीर्थम, परंतु बद्रिक आश्रम जैसे कोई तीर्थ न भूतम न भविष्यति, न कभी हुआ था न आगे चल के कभी होगा। तो ऐसे बद्रिक आश्रम के महिमा का वर्णन वैसे अनेक शास्त्रों में देखा जाता है। तो आजकल यहां जो इस समय विग्रह है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बद्री विशाल की। लेकिन इसके लिए थोड़ा एक इतिहास देना होगा। वैसे कलयुग में जो अब बद्री विशाल की मूर्ति है वो काले रंग के शालिग्राम शिला से प्रकट हुई है। शालिग्राम शिला क्या है आप तो जानते हैं, गंडकी नदी से प्राप्त होती है ये शालिग्राम शिला। तो ये मूर्ति सबसे पहले मूल रूप से कहां प्रकट हुई, कैसे प्रकट हुई, किसके द्वारा हुई, इसके बारे में पुराणों में कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है। फिर भी इस मूर्ति के बारे में काफी जानकारी है, परंतु सबसे पहले कहां थी ये मूर्ति, कहां से इसका सृजन हुआ ये कहना मुश्किल है। फिर भी थोड़ा और इतिहास एक सुनना आवश्यक है हमारे लिए। वैसे सत्ययुग में ऐसे बताया जाता है स्कंद पुराण में कि भगवान नारायण बद्री नारायण यहां पर साक्षात रूप का दर्शन देते थे। साक्षात रूप अर्थात जैसे हम एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, जीवित रूप में, मूर्ति रूप में नहीं, जीवित, ऐसे साक्षात रूप में भगवान दर्शन दिया करते थे। और सत्ययुग में तो सभी लोग बहुत धर्मपरायण थे, आत्मसंयमी थे, सतोगुणी थे, सदाचारी थे, शुद्ध थे, इसलिए भगवान साक्षात दर्शन यहां पर दिया करते थे। फिर समय बीतता गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में यहां भगवान साक्षात रूप का दर्शन देते थे, परंतु सभी को नहीं, केवल उनको जो योग मार्ग में अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके थे, ऐसे लोग जो हैं साक्षात दर्शन भगवान का कर सकते थे। आपको याद होगा हम यहां भगवान तपस्या के लिए बैठे हैं, और जैसे द्वापर युग आया और द्वापर युग आगे आगे चलकर द्वापर युग के अंत की ओर जब श्री कृष्ण का प्राकट्य निकट था, तो उस समय ये जो विशेष विशेष योगी जन होते थे जो यहां रहते थे उनके लिए भी भगवान के साक्षात रूप का दर्शन बड़ा विरला हो गया, बहुत ही कम दिखाई पड़ते थे भगवान। और यहां तक कि जो देवी देवतागण हैं जो कि यहां पर अक्सर आया करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, इससे बहुत सुख प्राप्त करते थे, तो वो भी वंचित रह गए इस सुख से, इस सौभाग्य से। तो देवगण और ऋषिगणों ने मिलके बहुत तीव्रता से, तीव्र दुखी हृदय से भगवान से कृपा याचना की और कहा कि हे प्रभु, आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं, और यदि आप इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो कृपया आप यहीं पर रहिए। तो फिर भगवान ने उत्तर दिया कि हे देवगण और ऋषिगण, थोड़े ही समय में अब कलयुग प्रारंभ होने वाला है, और कलयुग के निवासी जो होंगे वो बहुत पापी होंगे, धार्मिक कर्मों में या कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं रखेंगे, और साथ साथ बहुत घमंडी होंगे। तो ऐसे लोगों के समक्ष मैं साक्षात रूप का दर्शन नहीं दे सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनौती देते हैं कि भगवान हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट होते, यदि हैं भगवान तो उनको प्रकट होना चाहिए। लेकिन भगवान बाध्य नहीं है प्रकट होने के लिए, वो तो केवल अपने प्रेमी भक्तों के बीच में प्रकट होंगे। एक साधारण व्यक्ति के लिए भी कोई कहे कि यदि ये व्यक्ति का अस्तित्व है तो मेरे सामने आ जाए, तो साधारण व्यक्ति भी आएगा उनके सामने, तो भगवान क्यों आएंगे? तो भगवान वहीं पर उपस्थित होते हैं जहां कि उनके प्रेमी भक्त रहते हैं, अन्यथा वो नहीं आते प्रत्यक्ष रूप में। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं निवास करता हूं, यद्यपि वो करते हैं। मैं योगियों के हृदय में नहीं निवास करता हूं, यद्यपि योगियों के हृदय की बात दूर है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो निवास करते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मैं न वैकुंठ में निवास करता हूं, न मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे यहां निवास करने में इतना आनंद नहीं आता है जितना कि मुझे आनंद मिलता है उस स्थान में उपस्थित रह के, जहां कि मेरे भक्त मिलकर यत्र गायन्ति मत भक्ताः मेरा गुणगान कर रहे होते हैं, तत्र तिष्ठामि मैं उसी स्थान में जाके रह जाता हूं। तो भगवान अपने सानिध्य प्रदान केवल उन्हीं को करते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, और कलयुग के लोग तो इस योग्य है ही नहीं, क्योंकि दुर्गुणों से भरे हुए हैं कलयुग के लोग। भगवान की बात तो दूर है, जो देवगण हैं वो भी आना बंद कर देते हैं यहां पृथ्वी लोक के ऊपर। पहले सत्य त्रेता द्वापर में तो देवगण यहां बहुत आसानी से आया जाया करते थे, अक्सर आया जाया करते थे, और द्वापर युग में भले इंसान इतने आसानी से ऊपर न जा पाता, फिर भी अर्जुन जैसे लोग जाकर आए, अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके आए, फिर भी कम होता गया। परंतु कलयुग में देवगण भी नहीं आते हैं, और यदि आते भी हैं किसी काम से तो अदृश्य रूप में रहते हैं ताकि कोई इंसान उनको देख नहीं सके। और देवगणों की बात तो दूर है, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि गण हैं वो भी यहां रहकर अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं साधारण मनुष्यों के सामने, क्योंकि इस युग में हम सभी बहुत अयोग्य हैं। हम आज ऊपर व्यास देव जी के गुफा में थे और हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे व्यास देव जी अभी भी वहां पर रह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नर नारायण ऋषि वो भी यहां आज भी निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, फिर भी हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए। तो भगवान कहते हैं कि फिर इसलिए इस कलयुग में मैं अपना साक्षात रूप का दर्शन नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब यहां इस नारद शिला के नीचे, नारद शिला आपने देखी होगी अलकनंदा नदी में है, तप्त कुंड के बिल्कुल पास में नीचे है, तो उस नारद शिला के नीचे अलकनंदा के बहते हुए जल में मेरा एक विग्रह है, तो उस विग्रह को आप निकालिए और उसकी स्थापना करके पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। तो फिर ब्रह्मादि और अन्य जो देवता हैं उनको बहुत अच्छा लगा। भगवान ने यह भी कह दिया कि जो इस मूर्ति का दर्शन करेगा उसे वही लाभ प्राप्त होगा जो कि मेरे साक्षात रूप का दर्शन लेने से हो सकता है। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। तो हम सब ने दर्शन लिया है ना बद्र विशाल जी का, तो हमें वही लाभ हुआ है जो कि पूर्व युगों में साक्षात भगवान का दर्शन का लाभ दर्शन लेने से होता था। तो ब्रह्मा जी ने फिर नारद शिला के नीचे जाके वहां से मूर्ति ढूंढ निकाली, मूर्ति थी, और फिर विश्वकर्म को उन्होंने आदेश दिया कि यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, और विश्वकर्मा ने मंदिर का निर्माण कार्य करने के बाद फिर देवों ने देवगणों ने भगवान नारायण की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की और इस तरह से यहाँ सेवा चलती रही। नारद मुनि को प्रधान अर्चक या सेवक यहाँ नियुक्त किया गया और एक नियम बनाया गया कि यहाँ 6 महीने मनुष्य अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे और बाकी 6 महीने देवगण आएंगे और ये नियम आज भी पालन किया जा रहा है। बद्री विशाल जी का मंदिर मनुष्यों के लिए केवल महीने साल में 6 महीने खुला रहता है, बाकी 6 महीने दरवाजे बंद रहते हैं, कोई नहीं आता है यहाँ पर। तो उस समय नारद जी और अन्य देवगण आके यहाँ पूजा अर्चा करते हैं। तो ये तो रही पहले बहुत अनेक वर्ष पहले की बात। तो अब जो मंदिर हम देख रहे हैं और अब जो विग्रह की स्थापना हुई है वो कैसे हुई, अब इसके पीछे और एक बहुत अच्छा इतिहास है और इसका संबंध आदि शंकराचार्य से है। आदि शंकराचार्य का नाम तो आपने सुना होगा, दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ, केरल प्रांत में। बहुत ही कम आयु में, जबकि वो केवल 12 वर्ष के थे, उन्होंने संन्यास भी लिया और इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने सारे शास्त्रों को पढ़ के अपनी टीकाओं को लिख के बहुत ही कम आयु में उन्होंने बहुत अधिक प्रभाव प्राप्त कर लिया। वैसे शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं वो अद्वैतवाद को स्वीकार करते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि परम सत्य निराकार है और हमारे जीवन का ध्येय है मोक्ष की प्राप्ति करना, अर्थात निराकार भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। तो ऐसा सिद्धांत भक्ति के सिद्धांतों से बिल्कुल विरुद्ध है। तो शंकराचार्य कौन थे वास्तव में? प्रभुपाद जी अपने उपदेशों में, अपने शिक्षाओं में स्पष्ट बताते हैं कि वास्तव में शंकराचार्य एक वैष्णव हैं, क्योंकि वो स्वयं शिव जी के एक अवतार हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये मायावाद दर्शन का प्रचार किया, क्योंकि उस समय वैदिक सभ्यता का ह्रास हो रहा था और बौद्ध धर्म काफी फैल रहा था। बौद्ध धर्म के प्रचार में इस बात पर जोर दिया जाता था कि वेदों को हम नहीं मानते हैं, वेदों का अधिकार हम नहीं मानते हैं। तो वेदों की स्थापना किए बिना, वेदों के अधिकार को स्वीकार किए बिना आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के पथ में कैसे प्रगति हो सकती है? तो विशेष रूप से जो बौद्ध लोग हैं और मीमांसक दर्शन का पालन करने वाले लोग हैं, इनका विरोध करने के लिए भगवान ने ऐसे व्यवस्था की कि शिव जी को उन्होंने कहा कि आप एक ब्राह्मण के अवतार को लेकर आप इनका खंडन करना और वेदों के अधिकार को स्थापित करना। शिव जी स्वयं दुर्गा देवी से कहते हैं पुराणों में मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते तस्यैव अभेतम देवी तलो ब्राह्मण मूर्तिना। वो कहते हैं कि हे देवी, कलयुग में मैं एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और मैं एक ऐसे शास्त्र का प्रचार करूंगा जो कि असत शास्त्र है, जो कि सत्य नहीं है, जो झूठा है, जो मिथ्या एक दर्शन फिलॉसफी का मैं प्रचार करूंगा, जिसको मायावाद नाम दिया जाएगा, मायावादम असत शास्त्रम। और ये मायावाद जो असत शास्त्र है, ये किस तरह का शास्त्र होगा? प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये ढका हुआ बौद्ध धर्म जैसे होगा। वैसे तो मायावाद का प्रचार शंकराचार्य ने करना था बौद्ध धर्म के खंडन के लिए, और इसलिए उन्हें ऐसे कोई दर्शन को प्रस्तुत करना था जो कि बौद्ध धर्म से लगभग मिलता जुलता था, ताकि लोग उस समय स्वीकार करें, यहां तक कि बौद्ध लोग भी स्वीकार करें। खैर, यह तो एक लंबा विषय है, मायावाद, बौद्ध धर्म और भक्ति, परंतु इस समय जानना या कहना इतना आवश्यक है कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, ये स्वयं शिव जी के अवतार माने जाते हैं। प्रभुपाद जी भी बार बार इस बात को कहते हैं और स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। शिव जी अपने पुत्र स्कंद से कहते हैं कि हे पुत्र, जब कलयुग का समय आ जाएगा तो मैं एक सन्यासी का रूप धारण करूंगा और मेरे मूर्ति को ही और भगवान की मूर्ति को मैं नारद कुंड से उठाकर मैं उसे प्रस्थापित करूंगा। केवल इस मूर्ति के दर्शन मात्र से पापी से पापी लोगों के सारे पाप इस तरह भाग जाएंगे कि जैसे एक सिंह को देखकर हाथी का झुंड जो है वो भाग जाता है। तो ऐसे शिवजी स्वयं कहते हैं स्कंद से। शिव रहस्य नाम का एक ग्रंथ है जिसमें फिर से ये कहा गया है कि शिवजी शंकराचार्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो वास्तव में शंकराचार्य का उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का खंडन करके वेदों का अधिकार स्थापित करना, ताकि धीरे धीरे वो एक बुनियाद या आधार बनाएं, एक पृष्ठभूमि बनाएं, बैकग्राउंड बनाएं, कि जिसमें जो महान वैष्णव आचार्य हैं जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि आकर अपने शुद्ध वैष्णव सिद्धांत जो कि भक्ति का पथ है, इसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो भगवान की योजना ये थी कि शंकराचार्य ने आके भक्ति के आंदोलन की तैयारी करनी थी। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि वास्तव में शंकराचार्य एक वैष्णव हैं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव हैं और उनके अनेक प्रार्थनाएं हैं जिनमें कि ये बहुत साबित होता है। जैसे गंगा जी की स्तुति गंगा स्तव शंकराचार्य जी ने लिखी है, बहुत भक्तिपूर्ण है। स्वयं प्रभुपाद जी अपने भागवत के तात्पर्य में उल्लेख करते हैं कि शंकराचार्य जैसे ऋषियों ने गंगा जी की स्तुति भूरी भूरी की बहुत सारे की है और उनका भज गोविंदम स्तोत्र तो बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि ये तो भक्त ही है। साथ साथ में लक्ष्मी नरसिंह करुणा रस स्तोत्र जैसे स्तोत्र, इसमें पता चलता है कि शंकराचार्य तो एक वैष्णव ही हैं वास्तव में, परंतु उनकी सेवा थी इसलिए उन्होंने इस तरह के शास्त्र का प्रचार करना अनिवार्य समझा। तो खैर हुआ ये, शंकराचार्य वास्तव में रहते थे लगभग 1200 वर्ष पूर्व, सन 700 या 800 के बीच में। तो बहुत कम आयु में संन्यास लेने के बाद वो अपने शिष्यों के साथ में 3 महीनों की दुर्गम यात्रा करके यहाँ पर बद्रिकाश्रम में पहुँचे। तप्त कुंड में स्नान करके वो अंदर बद्र विशाल के मंदिर में दर्शन करने गए, परंतु वहाँ जाकर देखा कि बद्र विशाल की मूर्ति नहीं है, तो वहाँ पर एक शालिग्राम शिला मात्र है। तो बहुत दुखी हो गए शंकराचार्य, तो बाहर निकल आए चुपचाप। तो उनके पीछे थोड़े पुजारीगण भी आए, क्योंकि शंकराचार्य का नाम तो सब जगह फैल गया था, यद्यपि वो इतने छोटे थे, बच्चे थे प्राय देखा जाए तो, असाधारण बुद्धि थी उनकी, इसलिए उनका प्रभाव इतना फैल गया था। तो पुजारीगण आए उनके पास, उनका स्वागत आदि किया। फिर शंकराचार्य ने उनसे पूछा कि हमने सोचा था कि बद्र विशाल, ऐसे कहा गया है कि बद्र विशाल चारों युगों में प्रकट होते हैं विग्रह के रूप में यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बद्र विशाल की मूर्ति न होकर केवल शालिग्राम शिला है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो पुजारियों ने उत्तर दिया कि ऐसे कई चीनी दासियों, दासियों अर्थात जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, उनके डर से यहाँ जो पुजारी हुआ करते थे, उन्होंने विग्रह को कहीं ऐसे एक कुंड में छुपा लिया। परंतु अब सैकड़ों बार प्रयत्न करने के बाद भी अनेक कुंडों में वो विग्रह हमें बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। कितने वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं परंतु हमें पता नहीं कि वो विग्रह अब कहाँ है। इसलिए हमने मंदिर को खाली छोड़ने के बजाय हमने कम से कम शालिग्राम शिला की उपासना तो यहाँ स्थापित कर ली है। तो ऐसे लोक कथा है यहाँ की, ऐसे पुराणों का तो प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे यहाँ के लोग ऐसे कहते हैं, इसलिए इस कथा को हम दोहरा रहे हैं अभी। तो फिर शंकराचार्य ने पूछा कि क्या यदि वो विग्रह मिल जाए किसी कुंड में, तो आप इस विग्रह को पुनः स्थापित करके सेवा करने के लिए तैयार हो जाओगे? तो सारे पुजारियों ने एक ध्वनि में, एक आवाज में कहा, अवश्य अवश्य, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो फिर शंकराचार्य, ऐसे कहते हैं लोग, सीधे नारद कुंड की ओर गए और जल में प्रवेश करने वाले थे, जबकि पुजारियों ने जोर से आवाज लगाई कि यतिवर यतिवर, यति मतलब सन्यासी, कि उस जल में आप प्रवेश मत कीजिए, क्योंकि ये कुंड जो है इसका संबंध अलकनंदा से है और बहुत तेज गति है, यहाँ लोगों को खींच लेती है ये, और अनेक लोग अपने प्राण को त्याग चुके हैं यहाँ नारद कुंड में जाके। परंतु शंकराचार्य ने उनकी सुनी नहीं कोई बात, अंदर जल में गए और थोड़ी देर बाद आए, एक चतुर्भुज नारायण विग्रह को उठाकर लेकर आए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, परंतु शंकराचार्य ने देखा कि ये एक खंडित विग्रह था, उंगलियां जो हैं थोड़ी बहुत टूटी हुई थीं। तो शंकराचार्य ने सोचा कि खंडित विग्रह की स्थापना ऐसे नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने जाके अलकनंदा नदी में विसर्जन कर दिया। फिर दोबारा नारद कुंड में आए और दोबारा एक मूर्ति मिल गई, वो भी चतुर्भुज नारायण की मूर्ति मिल गई, परंतु वो भी खंडित थी। तो इस मूर्ति को भी जाकर अलकनंदा के जल में वो विसर्जित करके आए। तीसरी बार नारद कुंड में गए और एक मूर्ति मिल गई और ये भी खंडित थी। तो उस समय फिर उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इच्छा है कि इसी मूर्ति की स्थापना होनी है। तो फिर शंकराचार्य, सारे लोग जो देख रहे थे वो स्तंभित रह गए, ये सब देखकर कि क्या हुआ, ये कैसे चमत्कार हो गया, ये एक नहीं दो नहीं तीन मूर्तियां लगातार एक के बाद एक निकल आए और वो भी सारे के सारे मूर्ति खंडित, हो सकता है जल के प्रभाव से हुआ होगा ऐसे। तो फिर बड़े धूमधाम से विग्रह की स्थापना हुई, और क्योंकि शंकराचार्य वैसे केरल से आए थे तो उनके साथ में भी उनके कई शिष्य आए थे, तो उन्होंने यह ऐसे विधि बनाई कि केरल के जो नंबूद्री जाति के ब्राह्मण हैं वही यहाँ पर सेवा करेंगे बद्र विशाल के। तो आज तक की प्रथा विद्यमान है कि यो यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको रावल कहते हैं, वो केरल का ही एक नंबूद्री ब्राह्मण है। हालांकि यहाँ एक कमेटी आदि है, सरकार के भी कई लोग होते हैं इत्यादि, पहले जो रावल होते थे उनको व्यवस्थापन की जिम्मेदारी भी दी जाती थी, परंतु लगभग एक 70-80 वर्ष पूर्व फिर कोई समस्याएं हुई, रावल आदि गृहस्थ आदि कुछ बन रहे, ऐसे कोई समस्या हुई हमें ठीक पता नहीं है। फिर वहां पे काफी सरकार से बात करके ऐसी योजना की गई कि रावल केवल अभी पूजा अर्चा की सेवा को संभालेंगे, व्यवस्थापन नहीं देखेंगे। तो व्यवस्थापन के लिए और कोई उन्होंने व्यवस्था की है। तो ये रावल जो है ये नंबूद्री ब्राह्मण होते हैं। तो खैर, इस तरह से यहाँ की अर्चा पूजा अब चलती गई। शंकराचार्य ने ऐसे ही किया। शंकराचार्य की आयु केवल 32 वर्ष की थी जबकि उन्होंने अपने प्राण त्यागे 32 वर्ष की आयु में। परंतु आज तक इनका प्रभाव इतना ज़्यादा है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के ब्राह्मण जो है कौन से प्रांत के हैं आपको पता है? वो महाराष्ट्र के हैं। तो शंकराचार्य ने ऐसे ही किया, दक्षिण के पुजारियों को उत्तर में भेजा, पश्चिम के पुजारियों को दक्षिण में भेजा, ऐसे इधर उधर कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि सनातन धर्म की रक्षा हो और एकता जो है सनातन धर्म के अनुयायियों में बनी रहे, ताकि सब जाति भेद ये वो न हो। तो वैसे देखा जाए तो शंकराचार्य काफी बुद्धिमान थे। तो खैर, तो इस तरह से यहां विग्रह की स्थापना हुई। अब मैं आपको एक बहुत रोमांचक कथा बताना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ कोई काढ़ा वगैरह आने वाला था ना इस समय, है? आ गया? 5 मिनट लगाए, ठीक है जी। अब काफी यहाँ मौसम अच्छा है, अंदर गर्मी है, इसलिए काढ़े की इतनी आवश्यकता नहीं लग रही है। तो खैर, जब काढ़ा आएगा तो 5 मिनट का विश्राम लेंगे। आज हम थोड़ा ज्यादा बात करने की मूड में हैं। ऐसे अक्सर थोड़ा कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो राजनेताओं के समान होते हैं, क्योंकि एक बार माइक सामने आ जाती है तो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो खैर, तिब्बत में एक मठ है जिसका नाम है थोलिंग मठ। वैसे बौद्ध धर्म के वहां आने के पहले वो सब लोग बद्री नारायण की उपासना करते थे, बल्कि ऐसे कहा जाता है, किंवदंती है, किंवदंती मतलब ऐसे लोक कथा है कि वहां पर बद्री नारायण का मंदिर हुआ करता था। पौराणिक कोई प्रमाण नहीं है, किंवदंती है कि वहां पर तिब्बत में बद्री नारायण का मंदिर में वहां के लामा लोग जो हैं वो अर्चा सेवा करते थे, वो भक्त थे, वैष्णव थे वो लोग। अब पुराणों में त्रिविष्टप नाम है तिब्बत का, फिर त्रिविष्टप से ये अपभ्रंश होकर तिब्बत हो गया है, अभी टिबेट जो कहते हैं। तो कई वर्षों तक ऐसे बद्री विशाल की सेवा, बद्री नारायण की सेवा वहां पर चलती गई। परंतु ये हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचारक वहां पहुंच गए अनेक वर्षों पूर्व। वहां पे उन्होंने अनेक लोगों को, लामाओं को बौद्ध बना दिया, और जो बौद्ध बनाया तो अनेक लोग वहां के मांस आदि खाने लगे। जब ये सब देखकर और उनके श्रद्धा आदि के परिवर्तन को देखकर बद्री नारायण बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं इस स्थान में बैठना नहीं चाहता हूं। तो फिर उन्होंने वहां से निकल जाने का विचार किया, और कैसे निकले, बस सीधे जहां थे वहां से ऊपर निकले और छत में से छेद बनाकर उसमें से निकले। और ऐसे कहते हैं कि एक घोड़े के ऊपर, इसका नाम है श्यामकर्ण, उस घोड़े के ऊपर बैठकर सीधे माना गांव में आए। आज सुबह हम गए थे ना माना गांव, जहां आखिरी चाय की दुकान है इंडिया की। तो उस गांव में हम गए और भगवान गए अपने घोड़े के ऊपर बैठ के। इसलिए आज भी वहां कहते हैं कि माना गांव से ऊपर जो पहाड़ है, उस पहाड़ में उस घोड़े के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। आप में से कई भक्तों ने देखा होगा वहां चिन्ह दिख पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो श्याम कर्ण घोड़े से के ऊपर सवार होकर बद्री नारायण वहां थोलिंग मठ के मंदिर के छत को फाड़ कर ऊपर से सीधे यहां पर माना गांव में चले आए और यहां पर रहे, और फिर यहां इसके बाद यहीं पर रहे, कहीं गए नहीं। तो आजकल वहां जो उसी थोलिंग मठ में एक बहुत बड़ी बुद्ध देव का विग्रह है, और ये विग्रह बड़ा विचित्र है। वैसे आसन या मुद्रा तो वही है जैसे पद्मासन में बैठे हुए हैं बुद्ध, परंतु उनका जो सर है वो छत के ऊपर से निकलता है, उस छेद में से ऊपर छत के ऊपर से बाहर निकलता है उनका सर, और बाकी शरीर जो है उनका उस छत के नीचे है। तो इसका मतलब है, लोग कहते हैं कि ये छेद जो किया था बद्री नारायण ने, इसका मतलब है वह है, नहीं तो ऐसा बड़ा विचित्र है कि ऐसे कौन से मंदिर में यह पाया जाता है कि छेद करके भगवान का सर जो है वो ऊपर से हो, ऐसे नहीं होता है। तो खैर ऐसे वहां है, फिर भी वहां के लामा लोगों को जब पता चला कि बद्री नारायण ऐसे निकल गए हैं तो उनको बहुत भय हुआ। तो भयभीत होकर ये दौड़ते हुए यहां पर आए, अपने घोड़ों घोड़ों जो भी है सवारी लेके यहां पर चले आए बद्री का आश्रम में। उनको उन्होंने खबर मिली थी कि यहां शायद चले आए होंगे, इधर उधर फैले सब लामा लोग ढूंढने के लिए, फिर यहां पे इधर उधर फैल गए। बद्री नारायण भगवान को पता चला कि ये लामा लोग यहां पर आ रहे हैं, वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक बहुत छोटा रूप धारण कर लिया, बहुत ही छोटा, और इतना छोटा कि यहां एक पशु के पूंछ के नीचे वो रह गए। ये पशु का नाम है चंवरी गाय, चंवरी चंवरी गाय मतलब जिसका जो जिसकी पूंछ होती है इसमें बहुत बाल होते हैं, एक तरह की गाय है। अंग्रेजी में इसे याक कहते हैं, याक, आपने याक शब्द सुना होगा, अंग्रेजी में याक कहते हैं इस पशु को। तो इस इलाके में खास करके तिब्बत आदि के इलाके में, लद्दाख तिब्बत, इसमें बहुत प्रसिद्ध है और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु है। तो ऐसे चंवरी गाय के पूंछ के नीचे वो बैठ गए और इधर उधर लामा लोग ढूंढते ढूंढते थक गए, पाए नहीं, वापस चले गए। फिर भगवान पुनः प्रकट हुए, फिर इस चंवरी गाय के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने छुपा लिया था अच्छी तरह से उनको, तो उन्होंने एक वरदान चंवरी गाय को दिया और कहा कि तुम्हारे पूंछ जो है वो बहुत शुद्ध आगे चल के माना जाएगा, यहां तक कि ये पूंछ का प्रयोग किया जाता है चामर आदि के लिए, चामर हम इस्तेमाल करते हैं ना आरती में, तो इस पशु के पूंछ के बाल से है ये। देखिए किसी, वैसे बाल जो होते हैं वो अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि आप में से जो माताएं राजभोग आदि तैयार करती हैं, आप लोग बालों को ढक देते हैं कुछ कपड़े से ताकि बाल कहीं गलती से भी गिर ना जाए भोग में, क्योंकि बाल जो है, नाखून बाल, ये सब अशुद्ध माने जाते हैं। तो भगवान जब ऐसे विशेष व्यवस्था करते हैं कि ये बाल जो है इतना शुद्ध है कि इसे आरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चंवर से आता है चामर, आरती का चामर, तो केवल इस पशु के पूंछ से ही बनता है ये। वैसे और भी उदाहरण है, जैसे कि हड्डी है, ये हड्डी ये तो अशुद्ध चीज मानी जाती है, परंतु जो शंख होता है ये भी तो एक किसी प्राणी की हड्डी है, परंतु ये इतना शुद्ध है कि इसको बजाते हैं आरती के पहले और बाद में, बल्कि ये जय घोष के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी उसकी जो ध्वनि है बिल्कुल अब मोबाइल फोन की तरह नहीं है, जो कि अशुद्ध ध्वनि होती है, बल्कि जो शंख की ध्वनि होती है बहुत पवित्र होती है, हालांकि वो एक किसी प्राणी से निकली हुई होती है। उसी प्रकार से विष्ठा, विष्ठा आदि, विष्ठा की बात तो दूर है, यदि पुजारी अपना लघु शंका के लिए भी जाता है तो उसे स्नान करके ही आना पड़ता है, कपड़े बदलने पड़ते हैं, बहुत सारे विधि विधान है, परंतु गो का मय, गोमय गोबर, ये इतना शुद्ध माना जाता है, गोमूत्र इतनी शुद्ध माना जाता है कि वो भगवान का भी अभिषेक इनसे होता है, भगवान के सिंहासन को इसे धोया जाता है। तो कई नियम होते हैं, परंतु भगवान स्वयं जब कोई व्यवस्था करते हैं तो ऐसे अद्भुत चीजें भी होती हैं। इसलिए ये याक पशु चंवरी गाय के जो पूंछ के बाल हैं वो बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं और आरती के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। और आज भी ये लामा लोग जो हैं, समय समय पर, इतने वर्ष बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, इसके बाद भी ये प्रथा, ये जो संबंध इनका है बद्री नारायण के साथ, वो टूटा नहीं है। इसलिए हर साल वो कोई ना कोई भेजते रहते हैं, कोई ऊन के वस्त्र भगवान के लिए, कोई आभूषण या कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, और यहां से वो प्रसाद भी थोड़ा कुछ ले जाते हैं। तो वैसे ये और संबंध काफी है। अब यहां पर जो अब का मंदिर है, अब यहां जिस मंदिर को हम देख रहे हैं, वो मंदिर इतना पुराना नहीं है। जो विश्वकर्म ने मंदिर बनाया था वो तो बहुत प्राचीन काल में था, वो तो नहीं रहा। तो ऐसे बताया जाता है कि गढ़वाल, ये इस प्रांत को गढ़वाल कहते हैं, तो गढ़वाल के जो राजा थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। और ऐसे हमने सुना है, कोई कहते हैं कि रामानुज संप्रदाय के वरदाचार्य थे, जो कि इनके एक गुरु के समान थे गढ़वाल के राजा ने, उन्होंने राजा को प्रेरित किया और फिर उन्होंने ये मंदिर बनवाया। परंतु हमारे मन में संशय ये है कि ये रामानुज संप्रदाय के न होकर मध्व संप्रदाय के होंगे, क्योंकि मध्व संप्रदाय में एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं, जो मध्वाचार्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनका नाम है वरदराज। और आज जब हम वहां व्यास गुफे के पास गए थे, तो उनके पास वाले गुफे में, इसमें शिला लेख कह के बाहर था, आप अंदर जाके वरदराज के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में लेख थे वहां पे। तो वरदराज का संबंध और मध्व संप्रदाय का संबंध यहाँ काफी गहरा है, क्योंकि मध्वाचार्य आ गया, काढ़ा आ गया। क्योंकि मध्वाचार्य के गुरु तो व्यासदेव जी से थे, जैसे हमने सुबह चर्चा की थी। तो मेरा अनुमान ये है कि वो मध्व संप्रदाय के वरदाचार्य, वरदराज हुए होंगे। रामानुज संप्रदाय में ऐसे कोई हो भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ आगे पीछे देखकर ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ के और कोई निवासी पंडितों से बात करके कुछ पता चलेगा, लेकिन खैर गढ़वाल के राजा में 500 साल पहले लगभग इस मंदिर को बनवाया था। और फिर यहां एक स्वर्ण के, शुद्ध सोने के एक छत्री, कवच जैसे, कलश जैसे बनी हुई है, जो भी आपने देखी होगी। इंदौर की प्रसिद्ध महारानी अहिल्याबाई, इन्होंने दान की। इनकी भी पहचान गढ़वाल के राजा के साथ था, तो फिर उन्होंने अपने भक्ति श्रद्धा को इस तरह से व्यक्त किया यहाँ पर। और यहाँ पे जो विग्रह हैं बद्री विशाल के, वो थोड़े अलग से हैं, क्योंकि पद्मासन में बैठे हुए हैं। वैसे भी भगवान यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे थे, परंतु ये बोधिसत्व, जो बुद्ध देव की मूर्तियां होती हैं, वो अक्सर इस आसन में, मुद्रा में होते हैं। तो ऐसे हमने सुना है और पढ़ा है इधर उधर कि यहाँ पहले बद्री विशाल का जो मूर्ति थी, जब बौद्ध लोग आए तो उन्होंने आक्रमण किया और भगवान की मूर्ति को लेकर कहीं कुछ कर दिया, और फिर बुद्ध देव की मूर्ति बिठाई, और शंकराचार्य ने आके फिर पुनः वैसे बद्री विशाल की मूर्ति की स्थापना की। तो ऐसे कोई वाद कुछ चल रहा है, या कोई संशय है इसके बारे में कि इसका संबंध बौद्ध लोगों से भी है। तो खैर, ये पद्मासन में बैठे हुए हैं भगवान बद्री विशाल। तो हम भी अब पद्मासन में बैठ के थोड़े काढ़ा का आनंद स्वीकार करेंगे, और कथा समाप्त हुई नहीं है, तो यहाँ बाहर मत जाइए, क्योंकि एक बार बाहर जाने से वैसे तो ठंडी है, और दूसरी बात है फिर धीरे धीरे आने से प्रवचन में विघ्न हो जाता है। तो ठीक है, कथा के लिए अब 5-10 मिनट के लिए विराम देंगे, आप काढ़ा पी के फिर से प्रवचन के लिए आइए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो शुरू करें। थोड़ी बातचीत अभी भी हो रही है। तो मंदिर के प्रांगण में आपने अनेक ऐसे मूर्तियां आदि देखी होंगी। एक तो भगवान बद्र विशाल की उत्सव मूर्ति जैसे है एक तरफ, दूसरी ओर आप देखेंगे कि घंटाकर्ण नाम के एक व्यक्ति की मूर्ति है। तुमने सोचा ये घंटाकर्ण कौन है, ये क्या चीज है, ये किसी ऐसे देवता का नाम तो ऐसे लगता नहीं, कौन है ये, कैसे हुआ? तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। वैसे कथा लंबी है लेकिन हम थोड़े संक्षिप्त रूप में बताएंगे। वैसे बताया जाता है कि ये कर्ण जो इसका नाम था, एक पिशाच था, ये घंटाकर्ण नाम बाद में लगा, एक पिशाच था। पिशाच आप जानते हैं, भूत प्रेत पिशाच है। तो ये मांसाहारी था, तरह तरह के गंदे आदतों से उसका जीवन बीतते रहता था। ये एक शिवजी का बहुत परम उपासक था। परम का अर्थ है कि बहुत दृढ़ता से वो शिवजी की उपासना करता था। किसी देवी देवताओं का नाम उसके मुख से गलती से भी नहीं निकलता था। और जहां तक भगवान नारायण की बात है तो भगवान नारायण से तो बिल्कुल घृणा करते थे। मैं केवल शिव उपासक हूं, बस इतना ही। यहां नहीं रहते थे वो, पहले कहीं दूसरी जगह की बात है। तो ऐसे काफी समय तक शिवजी को प्रसन्न करने के बाद, प्रयास के बाद शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। तो उस व्यक्ति ने, पिशाच ने कहा, मुझे आप मुक्ति दिला दीजिए। तो शिवजी दुविधा में पड़ गए। वो सोच रहे थे इस व्यक्ति को हम कैसे मुक्ति दे देंगे। वैसे तो ये इसकी भावना जो है मेरे प्रति तो ठीक है, वो तो उपासक है मेरा, मुझे प्रसन्न करना चाहता है, परंतु भगवान नारायण के प्रति जो घृणा की भावना है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसलिए मुक्ति के लिए अयोग्य है। तो मुझ में और नारायण के प्रति में भाव में इतना अंतर है कि अवश्य ऐसे व्यक्ति को मैं मुक्ति नहीं दे सकता। तो फिर शिव जी सोच लगे क्या कहा जाए इससे। तो शिव जी ने कहा कि देखो, ये मुक्ति वगैरह बहुत सारे ये कठिनाई की बात है। मैं तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा, स्वर्ग दूंगा, दुनिया के तरह तरह के सुविधाएं मैं प्रदान करने के लिए तैयार हूं, कुछ मांगो। तो फिर घंटाकर्ण, उस समय नाम तो घंटाकर्ण नहीं था, तो वो कहने लगा कि प्रभु आप ऐसे मेरे साथ मत कीजिए, मुझे तो इन चीजों की कोई रुचि नहीं है। फिर आगे शिव जी उनको बताने लगे कि देखो, मुक्ति मैं भी नहीं दे सकता, मुक्ति तो केवल श्रीमन नारायण दे सकते हैं, भगवान विष्णु दे सकते हैं। तो तुम्हें भगवान श्री विष्णु के शरण में जाना चाहिए, तब जाकर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। परंतु इस समय तुम्हारे मन में भगवान नारायण के प्रति इतनी घृणा है तो फिर कैसे मुक्ति मिल पाएगी तुम्हें, संभव नहीं है। तो फिर इस पिशाच ने उत्तर दिया कि आप क्या कह रहे हैं प्रभु, मैं तो नारायण का नाम भी सुनना नहीं चाहता, जहां भी होते हैं तो मुझे बहुत क्रोध आता है नारायण के नाम से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको समझ जाओ और तुम भगवान नारायण की सेवा करो। तो फिर बहुत बड़े मुश्किल से उनको मना लिया और भगवान नारायण की सेवा शुरू कर ली उस व्यक्ति ने। वैसे ये इतना घृणा करता था भगवान नारायण से क्योंकि जगह जगह भगवान नारायण के भक्त होते थे, वो नारायण नारायण या कृष्ण कृष्ण का नाम लेते थे, तो उसको इतना बुरा लगता था भगवान का नाम सुन के कि उसने अपने कानों में घंटे लगा दिए ताकि डिंग 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 आवाज़ हो, भगवान नारायण का नाम सुनाई न दे। इसलिए उनका नाम हुआ घंटाकर्ण। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने घृणा करते हैं भगवान से। नारद जी भागवत में बताते हैं कि घृणा ये भी ऐसी एक भावना है कि इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी जो साधारण भक्ति से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है वो घृणा आदि से हो सकती है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि नारद मुनि हमें कह रहे हैं कि आप घृणा करो भगवान से, परंतु ये बहुत तीव्र भावनाएं हैं और क्योंकि ये भगवान से संबंधित होते हैं इसलिए फल प्रदान करते हैं। तो खैर, ये घंटा कर्ण नाम के एक व्यक्ति थे, तो इस तरह से अपने कानों में कर्ण, कर्ण अर्थात कान, कानों में घंटा लगा के घूमते थे, तो इतना घृणा करने वाले व्यक्ति। तो खैर, भगवान नारायण की सेवा आदि उन्होंने शुरू कर दी और करते करते फिर उन्होंने वो एक बार द्वारका गए कि चलो द्वारका में श्री कृष्ण हैं तो द्वारका में जाके हम कुछ मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो वहाँ द्वारका जाके देखा कि श्री कृष्ण पुत्र कामना की पूर्ति के लिए शिव जी की उपासना करने कहीं गए हैं। तब ये सोच ले, अरे ये कैसी मुसीबत है। अब उधर शिव जी बताते हैं कि हमें कृष्ण या नारायण के पास जाना चाहिए, ये परम है, ये मुक्ति दे सकते हैं, और अब यहाँ कृष्ण के पास आता हूँ तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो सोचे वो शिव जी के पास जा रहे हैं पुत्र कामना की पूर्ति के लिए, अब क्या किया जाए। तो बहुत बेचैन हो गए, डावाडोल हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, चलो अभी चलते तो हैं, हम फिर से जाते हैं। तो फिर से वो आए और उस समय आए यहाँ पर बद्रिकाश्रम में, उस समय यहाँ पर भी श्री कृष्ण समाधि की अवस्था में स्थित थे। तो यहाँ पर भगवान का नाम लेते रहे, नारायण भगवान का नाम लेते लेते सोचा चलो अब शिव जी ने बताया तो मुझे लेना चाहिए। इतनी तीव्रता से ले रहे थे क्योंकि उनका मन बहुत विचलित था कि मैं क्या समझ नहीं पा रहा हूँ, शिव जी है नारायण है क्या सही। तो बहुत तीव्रता से बहुत ही भावना से हृदय से वो नारायण का नाम पुकार रहे थे। तो यहाँ पे सब साधु लोग जो रहते थे वो भी बहुत प्रभावित हुए इसके हृदय की पुकार को सुनकर, और अंततः श्री कृष्ण ने देखा कि अरे ये इतनी अच्छी तरह से पुकार रहा है मेरा नाम। तो अंततः उन्होंने फिर उनको उपदेश दिया कि आप, वरदान दिया कि आप यहीं रहो, आप यहीं रह के एक द्वारपाल बनो, यहाँ के क्षेत्रपाल बनो, और उसके बाद ये घंटा कर्ण यहाँ इस जगह के क्षेत्रपाल है। वो इस तरह से उनकी भक्ति में आने की कथा है। वैसे और थोड़ी कथा लंबी है, हमने थोड़े थोड़े में ही उसको बता दी है आपको। यहाँ पर पास में अनेक कुंड हैं, जैसे कि नारद कुंड और तप्त कुंड। ये तप्त कुंड में तो गर्म जल है, ऐसे बताया जाता है कि अग्निदेव को बताया गया था कि यहाँ पे आप आके तपस्या करो, क्योंकि जब सती का शरीर जल गया था दक्ष यज्ञ में, जो शिव जी की पत्नी थी, तो शरीर जल गया मतलब इसमें अग्निदेव का भी तो सहयोग चाहिए था। तो अग्निदेव ने सोचा कि मेरे हाथों से भी बहुत बुरा काम हो गया, तो फिर इसके लिए प्रायश्चित करने के लिए उनको यहाँ आना था। उनको कहा गया कि यहाँ आके तुम तपस्या करो और तुम यहाँ अलकनंदा के पास में, अलकनंदा का जल तो बहुत ही शीतल है, ठंडा है, तुम यहाँ पे भूमि के भीतर रहो और जो यहाँ तीर्थ यात्री आएंगे, भक्त आएंगे, तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी, और जो तुम्हारे इस गर्म जल में फिर स्नान करेगा उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और तुम्हें यहाँ रह के 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ। तो इसलिए अग्निदेव यहाँ पे निवास करते हैं वो भी तप कर रहे हैं यहाँ पे, और इसलिए फिर उनका कुंड है तप्त कुंड। और यहाँ पे पांच प्रमुख शिलाएं भी हैं, बड़ी बड़ी हैं काफी, और सारे के सारे वो तप्त कुंड के पास में ही हैं, बद्री विशाल मंदिर के पास में हैं, आपने देखे होंगे। और इन शिलाओं के ऊपर उनके नाम लिखे हुए हैं। और वैसे नारद शिला है, गरुड़ शिला है, नरसिंह शिला है, वराही शिला है और मार्कंडेय शिला है, तो पांच शिलाएं इनके यहाँ पर हैं। तो ऐसे और छोटी छोटी चीजें बहुत सी हैं। तो बद्री का आश्रम एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति आजीवन रह के भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं जान पाएगा। ये हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है। तो खैर, बद्री का आश्रम में आने का हमारा अहो सौभाग्य है। अब विषय इस विषय के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा जो कि बद्री का आश्रम से बहुत संबंधित है, और प्राय इस विषय की चर्चा हमने नहीं की है, हालांकि केवल संक्षिप्त में ही बात की है, और वो है नर नारायण ऋषि के बारे में। इन पर्वतों के नाम ही तो नर और नारायण पर्वत हैं। यहाँ वो अनेक साल से रहे और अब भी रह रहे हैं, और इनका संबंध बद्री काश्रम से बहुत पुराना है और बहुत गहरा है। इसलिए बद्री काश्रम में आने के बाद नर नारायण ऋषि की चर्चा नहीं करना ये उचित नहीं होगा। नर नारायण ऋषि ये भी भगवान के अवतार हैं। हम हर दिन इनका स्मरण करते हैं। यद्यपि नर नारायण ऋषि की चर्चा तो भक्तों के बीच में अधिक होती नहीं है, नरसिंह भगवान की होती है, श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, रामचंद्र, वराह इत्यादि होती है, प्राय विरला ही कहीं नर नारायण की चर्चा होती है। परंतु हम प्रतिदिन नर नारायण को याद करते हैं। कब करते हैं? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत। भागवत क्लास के पहले हम ये श्लोक कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का उच्चारण करने के पहले, जो कि परम विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, हम नमन करते हैं सर्वप्रथम नर नारायण ऋषि को, तत्पश्चात देवी सरस्वती को जो कि विद्या की देवी हैं, और फिर श्रील व्यास देव को जो कि इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत के रचयिता है। तो हर दिन नर नारायण ऋषि को नमस्कार करके ही हम भागवत सुनते हैं। तो देखिए फिर कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है हमें नर नारायण ऋषि के बारे में सुनना और जानना, और विशेष करके जब हम यहां उनके ही धाम में आए हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में और 11वें स्कंद में इनका उल्लेख है। पहले और दूसरे स्कंद में केवल उल्लेख है एक एक श्लोक में, और 11वें स्कंद में उनके एक बद्री काश्रम में हुई लीला का वर्णन है जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स या स्रोत। इनमें सूत गोस्वामी 22 महत्वपूर्ण या प्रमुख अवतारों का उल्लेख करते हैं, जैसे पहले हैं चतुष्कुमार, फिर शुकर या वराह रूप, फिर नारद जी जो कि एक शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं, और फिर चौथे नंबर पे उन्होंने नर नारायण ऋषि का नाम लिया है। और उसमें वो कहते हैं तुर्य धर्म कला सर्गे नर नारायणाव ऋषि भूत्वा आत्मो श्रमपो उपेतम अकरोत दुश्चरम तपहु। इसका मतलब है कि धर्म कला सर्गे, धर्म एक प्रजापति थे, हम इनके बारे में बताएंगे, उनकी पत्नी के गर्भ से नर नारायण ऋषि इन दोनों जुड़वे भाइयों का जन्म हुआ, और उन्होंने भूतवा आत्म उपशम अपने इंद्रियों को संयम में लाने का जो प्रयत्न है उपेतो, इसकी प्राप्ति के लिए अकरोत दुश्चरम तपः, बहुत कड़ी तपस्या की। तो भगवान अवतार लेते हैं तपस्या करने के लिए, ये कैसी बात है? तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करते हैं। परंतु नर नारायण ऋषि का जन्म कैसे हुआ ये जरा हम देखते हैं। सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनको मानस पुत्र कहते हैं, और उनके शरीर से भी, शरीर के विभिन्न भागों से भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब प्रजापति थे। प्रजापति अर्थात उनको प्रजा की उत्पत्ति करके इस ब्रह्मांड को जीवों से भरना था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से दक्ष प्रजापति एक थे, अन्य थे जैसे अंगिरा, पुलस्त, पुलह, नारद जी भी हैं उनके मानस पुत्र। उधर उनके शरीर से कहा जाता है कि उनके दाहिने स्तन से उत्पन्न होने वाले एक पुत्र थे ब्रह्मा जी के, जिनका नाम था धर्म। तो दक्ष प्रजापति के 16 पुत्रियां हुई। उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने वास्तव में स्वायंभुव मुनि के पुत्री प्रसूति से विवाह किया। प्रसूति की और 2 बहनें थीं, आकुति और देवहूति। देवहूति तो कर्दम मुनि की पत्नी थी, कपिल देव की माता। तो खैर दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ स्वायंभुव मुनि मनु की पुत्री प्रसूति से। फिर 16 कन्याएं पुत्रियां हुई उनको, उनमें से 13 कन्याओं को, पुत्रियों को उन्होंने धर्म के हाथ दे दी विवाह में, जो भी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। 1 अग्निदेव के हाथ में, 1 पितरों को और 1 जो सती थी उनको शिव जी को दिया। अब इन 13 पत्नियों में से धर्म के सबसे आयु में कम थी मूर्ति देवी। तो मूर्ति देवी के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था नर और नारायण, ये जुड़े भाई। तो इस तरह से वंशावली यदि देखी जाए नर नारायण ऋषि की तो ये ऐसी है। तो खैर यहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य काफी लंबा लिखते हैं कि तपस्या मनुष्य जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वो बताते हैं कि ऋषभदेव महाराज ने भी खुद अपने पुत्रों को आदेश दिया था, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धियेत यस्मात ब्रह्म सौख्यम फनंतम, कि मनुष्य को चाहिए कि वो दिव्य तपस्या करे, दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तपस्या में स्थित हो जाए, जिससे कि निरंतर आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति मिल सके। तो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है उस ब्रह्म सुख की प्राप्ति तपस्या के द्वारा। तो भगवान स्वयं आके सिखलाते हैं कि कैसे व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। एक आदर्श उदाहरण भगवान स्वयं प्रस्तुत करते हैं। भगवान के विभिन्न अवतार हैं और प्रत्येक अवतार किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आते हैं। जैसे कि जब उन्होंने परशुराम का अवतार लिया जो कि शक्त्यावेश अवतार थे, दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने के लिए अवतार लिया। नारद जी को जो कि भक्ति की शक्ति मिली, भक्ति के प्रचार का कार्य करना था। जहां तक विष्णु तत्व अवतार हैं जैसे वराहदेव, उनका अवतार का कारण था कि वो गर्भोदक सागर में पड़े हुए पृथ्वी को उठाना था, बचाना था। मत्स्य अवतार का उद्देश्य था सत्यव्रत मुनि और ऋषियों की रक्षा करना। उसी तरह से नरसिंह भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य था भक्त प्रहलाद को बचाना। तो प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के जो विभिन्न अवतार होते हैं वो भगवान के संपूर्ण शक्ति को प्रकट नहीं करते हैं, केवल उनके उस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितनी शक्ति की आवश्यकता है उतने ही शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए विशेष विशेष शक्ति प्रदर्शित करते हुए प्रभुपाद जी वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि नर नारायण ऋषि इन्होंने वैराग्य और तपस्या मनुष्य जीवन में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अवतार लिया, तो ये इनका उद्देश्य था। और फिर जिस तरह से नर नारायण ऋषि ने तपस्या की वो अतुलनीय है, मनुष्य समाज के लिए आज भी मनुष्यों के भलाई के लिए यहां पर बद्रिकाश्रम में निवास करके खूब तपस्या कर रहे हैं। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि नर नारायण ऋषि आज भी पूजे जाते हैं बद्रिक आश्रम में जो कि हिमालय में है। तो ऐसे बद्रीनाथ के बद्रिक आश्रम के बारे में प्रभुपाद जी भी उल्लेख करते हैं। तो भगवान तो हर वस्तु के उद्गम है, तो तपस्या और वैराग्य के उद्गम क्यों नहीं होंगे? बल्कि भगवान का ये तो एक महत्वपूर्ण लक्षण है। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, हम जानते हैं, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यश सहस्रिय ज्ञानम वैराग्योश्चैव सन्नम भग इतिंगणा। पराशर मुनि विष्णु पुराण में बताते हैं कि भगवान शब्द का अर्थ है कि जिनके पास भग या ऐश्वर्य 6 प्रकार के पूर्णतया प्राप्त हैं, जिनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, जो संपूर्णता से वीर हैं, जिनका यश परिपूर्ण है, जिनका ज्ञान परिपूर्ण है, जिनका बल परिपूर्ण है, जिनका वैराग्य भी परिपूर्ण है, सौंदर्य आदि, तो ये वैराग्य ये भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। ये देखा जाता है कि दुनिया में यदि कोई बहुत विरक्त है तो वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कि एक बहुत सुंदर व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत बलवान व्यक्ति, बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, ये सब प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो ऐसे एक बहुत विरक्त व्यक्ति भी प्रसिद्ध हो जाते हैं समाज में, क्योंकि लोग आकर्षित होते हैं, ये भी एक ऐश्वर्य होता है। तो स्वयं भगवान भी इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं और कितने सुंदर ढंग से वो स्थापित करते हैं इस बात को। वैसे विरक्ति के वैराग्य या वैराग्य के ऐश्वर्य को भगवान के अन्य अवतारों में भी हम पाते हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र ने वैराग्य का प्रदर्शन किया जब आसानी से अपने राज्य को छोड़कर 14 वर्ष के वनवास में वो चले गए। उधर चैतन्य महाप्रभु ने केवल 24 वर्ष के आयु में अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया, जो कि उनकी परिस्थिति में साधारण व्यक्ति को लेना प्राय असंभव था। फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहा करते थे तो उनकी जो रानियां थीं वो इतने आदर्श ढंग से भक्ति भाव से उनकी सेवा करती थीं और वो कितने सुंदर थीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से निरासक्त हुआ करते थे और उनकी रानियां समझ नहीं सकती थीं कि ये कैसा संभव हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से विरक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। एक बार गोपियां दुर्वासा मुनि को मिलने के लिए गई थीं, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया था श्रीमती राधा रानी को कि जो भी तुम पकाओगे वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तो गोपियां भी चाहती थीं कि हमें भी ऐसे वरदान मिल जाए। तो जब यमुना पार करके जाना था तो नौका नहीं था, तो वैसे उनको मुनि ने बताया था कि आप बोलो कि श्री कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी। अब कृष्ण ब्रह्मचारी 16,108 रानियां हैं और फिर रासलीला करते हैं, फिर वो कैसे ब्रह्मचारी हो सकते हैं? परंतु हैं, ये हैं श्री कृष्ण। तो जो कृष्ण तत्व जानते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जिनके पास है, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण का स्तर हमारे जैसा नहीं है। और फिर वापस जब आ रहे थे तो दुर्वासा मुनि से कहा हम वापस जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जल को अलग करने के लिए, जल में से रास्ता निकालने के लिए कहो कि दुर्वासा मुनि केवल उपवासी करते हैं, क्योंकि जब गोपियां वहां गई थी दुर्वासा मुनि के लिए तो उन्होंने खूब सेवा की, ऐसी दावत खिलाई दुर्वासा मुनि को, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। और फिर दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं उनसे, इस मंत्र का उच्चारण करो कि दुर्वासा मुनि सदैव उपवास करते हैं। तो ऐसे आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो होते हैं उनकी क्रिया मुद्रा आदि समझना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर, ऐसे वैराग्य का प्रदर्शन नर नारायण ऋषि ने किया, कड़ी तपस्या जो कि अन्यों के लिए संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंध में भी ऐसे ही उल्लेख आता है, जबकि सूत गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी समस्त अवतारों का वर्णन करते हैं और इसमें भी वो नर नारायण ऋषि का उल्लेख करते हैं कि कैसे वो जुड़वे भाई थे, मूर्ति देवी के गर्भ से प्रकट हुए और आगे चल के कामदेव ने अप्सराओं के द्वारा उनके तपस्या को भंग करने का प्रयास किया परंतु वो असफल हुए। तो ये उल्लेख संक्षेप में केवल ऐसे बताया गया है। तो खैर, नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ मूर्ति देवी के गर्भ से, मूर्ति देवी की खूब श्रद्धा और भक्ति से सेवा की अपनी माता की, साथ साथ उनके पिता धर्म के जो अन्य पत्नियां थीं उनकी भी खूब सेवा की, भेद कभी नहीं किया उन्होंने। उनके भाई भी थे, उनके प्रति भी ऐसी ही श्रद्धा की भावना उन्होंने रखी। ऐसे सेवा करते करते मूर्ति देवी नर और नारायण से बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटों से कहने लगी कि हे पुत्रों, मैं तुम्हारी निष्कपट श्रद्धामय सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तो आप कहिए कि आप क्या वरदान चाहते हैं। तो नर नारायण ऋषि ने कहा कि हे माते, यदि आप वास्तव में हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमें ये वरदान दीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, ये अनुमति दीजिए कि हम घर बार छोड़कर हम विरक्त जीवन जिएं और खूब तपस्या करें, हम घर छोड़ के चले जाएं और अपने आप को तपस्या में स्थित करें। तो और इतना ही नहीं कि हम आगे चल के भी सदैव ऐसे तपस्या में स्थित रहें। तो बहुत कम माताएं हैं जो ऐसे वरदान को बड़ी खुशी से दे सकते हैं। तो खैर, यद्यपि मूर्ति देवी पे कोई साधारण महिला नहीं थी, प्रजापति की पत्नी थी, ये सृष्टि के शुरुआत के समय की बात है तो सभी लोग बहुत विशेष हुआ करते थे, ये ऊपरी लोगों की बात है। तो परंतु क्या करते, उन्होंने पहले से वचन दे दिया था कि तुम कोई वरदान मांगो मैं दे दूंगी, तो अब वचनबद्ध हो गई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये दे देती हूं। और इस तरह से अनुमति अपनी माता से प्राप्त करके वो चली गई। वैसे माता ने कहा तो था कि देखो, जब चले जाओगे तो हमको भूल नहीं जाना, बस समय समय पर हमें आके मिलना, क्योंकि मातृ स्नेह होता है। तो नर और नारायण ये दोनों फिर चले गए और यहां पर बद्री का आश्रम में आए और कड़ी तपस्या में अपने आप को उन्होंने स्थित कर दिया। और इसलिए उनके पीछे ये दो पर्वत के नाम हैं, जैसे हम कल आज सुबह बता रहे थे कि नर नाम के पर्वत के ऊपर यहाँ ये आवासीय स्थान है और नारायण पर्वत पर बद्र विशाल का मंदिर स्थित है और दोनों पर्वतों के बीच में अलकनंदा तेजी से बहती है। तो अपने भाई, अपने छोटे भाई नर की तपस्या देखकर नारायण बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि वो जुड़वे भाई थे, फिर भी जुड़वे भाइयों में भी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों जुड़वे थे, परंतु हिरण्यकश्यपु बड़ा कहलाता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब जुड़वे बच्चे होते हैं तो जो माँ के गर्भ से पहले आता है वो छोटा होता है। यह हालांकि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, जो पहले जन्म हुआ जिसका मतलब वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिसका जन्म पहले होता है वो छोटा होता है। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप का जन्म बाद में हुआ था, एक के हिरण्याक्ष के बाद, इसलिए वो बड़े भाई थे। इसी तरह से हुआ होगा, नारायण बड़े भाई हैं और नर छोटे भाई, साथ साथ नारायण तो स्वयं भगवान हैं और नर तो जीव के प्रतीक हैं। तो नारायण ने अपने भाई, छोटे भाई नर की तपस्या, कड़ी तपस्या को देखी और बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि कोई वरदान मांगो मुझसे। तो छोटे भाई नर ने कहा कि आप मुझसे, मुझ पर प्रसन्न हैं तो इससे बढ़कर और मैं क्या वरदान मांग सकता हूँ, बस यही वरदान मुझे चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी नारायण कहने लगे, नहीं नहीं कुछ तो मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। और यद्यपि तुम्हें वरदान देता हूँ कि यद्यपि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, फिर भी जब हमारे दोनों के नामों का उच्चारण किया जाएगा तो उस समय तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा और बाद में मेरा नाम। ऐसे ही होता है ना, नर नारायण ऋषि, नारायण नर ऋषि नहीं कहते हैं, नर नारायण ऋषि। और जो इस तरह से तुम्हारा नाम पहले उच्चारण करके फिर मेरा नाम लेंगे उनको असीम कृपा प्राप्त हो जाएगी। नर ने वैसे फिर एक वरदान पूछ ही लिया था और वरदान ये था कि कृपया आप मेरे सारथी बन जाइए। तो फिर वगैरह नारायण हंसे और कहने लगे, भावना के वशीभूत होकर तुम ऐसे पूछ रहे हो, परंतु इस अवतार में या इस जन्म में हम दोनों ने तपस्वियों का जीवन स्वीकार किया है, तो ऐसे कहां सारथी बनने का प्रश्न उठता है। परंतु अगले जन्म में, अगले अवतार में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा, इसलिए अगले अवतार में नर अर्जुन बने और नारायण श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, ऐसे कहते हैं। और फिर श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के और अर्जुन की इच्छा पूरी हो गई। उधर मूर्ति देवी ने अनुमति तो दे दी थी अपने दो पुत्रों को तपस्या करने के लिए, लेकिन बाद में बहुत दुख हो रहा था क्योंकि दोनों बेटे, दोनों पुत्र अपनी तपस्या में इतने मग्न हो गए थे कि अपने माता को, पिता को, संसार को भूल चुके थे। माता नहीं भूल पाई उनको, तो माता ने सोचा कि इतना समय बीत गया, अब मेरे पुत्र मुझसे मिलने आए नहीं, तो यदि वो मेरे पास नहीं आए तो मैं उनसे मिलने जाऊंगी। तो फिर वो मिलने के लिए उनको यहां बद्रिकाश्रम में आई। तो नर नारायण ऋषि ने उनका स्वागत किया, उनसे मिली, तो नर नारायण ऋषि दोनों प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे माते, नहीं आपने अवश्य हमें कहा था कि हमें आपसे आके मिलना चाहिए, लेकिन अब मैं वचन देता हूं कि भाद्रपद महीने के द्वादशी तिथि में मैं अवश्य तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। और यहां पर एक मूर्ति देवी का मंदिर है जो बद्रविशाल मंदिर के पास में ही है, और वहां पे भाद्रपद महीने के द्वादशी में एक बहुत बड़ा मेला होता है मूर्ति देवी के मंदिर में। और ऐसे बताया जाता है कि इस दिन नर नारायण ऋषि अपनी माता के पास जाते हैं और इस मेले में जो अर्चा पूजा आदि होती है वो बद्री विशाल मंदिर के रावल ही स्वयं देखभाल करते हैं, वो आते हैं करने के लिए। तो नरनारायण ऋषि के बारे में जानकारी आगे भी दी हुई है 11वें स्कंद में, जिसमें बताया जाता है कि नरनारायण ऋषि दोनों ही बहुत शांत स्वभाव के हैं और दोनों ही आध्यात्मिक पथ के चरम सीमा को प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने भक्ति सिखाई जिसके द्वारा नैष्कर्म्य या भौतिक कर्मों से मुक्ति के पथ को सिखलाया। और यह भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अद्य अपि च आस्ते कि आज तक भी वो जीवित हैं, मतलब नर नारायण ऋषि भी यहाँ इन पर्वतों में कहीं तो हैं और वो तपस्या कर रहे हैं, परंतु हम इतने योग्य नहीं हैं कि उनका दर्शन हम कर सकें। तो ऐसे समझा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि नर नारायण ऋषि ने नारद जैसे ऋषियों को ऐसे उपदेश दिया और आगे चल के नारद मुनि ने भी नैष्कर्म्य के ऊपर अपने शिष्य व्यासदेव जी को उपदेश दिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में स्वयं नारद जी कहते हैं नैष्कर्म्यम अप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, कि यदि किसी के पास आध्यात्मिक ज्ञान है परंतु वो ज्ञान भक्ति रहित है तो ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, दूसरे शब्दों में नर नारायण ऋषि ने नारद जी को सिखलाया और आगे चल के नारद जी ने अन्यों को सिखलाया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है जिससे कि कर्म बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, भौतिक क्रियाओं के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे नर नारायण ऋषि का वर्णन यहाँ पे है। और आगे चल के 9-10 श्लोकों में नर नारायण ऋषि के वैराग्य के ऐश्वर्य के संदर्भ में एक लीला है। ऐसे कहा गया है, श्रीमद् भागवत के और अन्य पुराणों की कथाओं को मिलाकर हम अभी वर्णन करने वाले हैं कि नर नारायण ऋषि जब अपने तपस्या में स्थित थे बहुत समय के लिए, तो स्वर्गलोक में बैठे हुए इंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए। जब भी कोई ऋषि मुनि यहाँ ज्यादा तपस्या करते हैं तो इंद्रदेव चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है मेरे कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इंद्रदेव आसक्त हैं अपने पद से। यद्यपि वो भक्त हैं फिर भी उनको भौतिक ऐश्वर्य भोग आदि से थोड़ी आसक्ति है। तो उन्होंने सोचा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है, तो वो स्वयं आए नर नारायण ऋषि के पास, बड़े विनीत भाव से मीठे स्वरों से हाथ जोड़ के दोनों के सामने खड़े हुए और कहने लगे कि हे मुनिवरों, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अब बात यह कि वो कौन होते हैं प्रसन्न होने वाले, वो दूसरी बात होती है, लेकिन इंद्रदेव कहने लगे हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। तो उस समय इंद्रदेव नहीं जानते थे कि ये स्वयं भगवान हैं। तो कोई वरदान हमसे आप अवश्य मांगिए। परंतु नर नारायण ऋषि जो तपस्या में स्थित थे उन्होंने आंखें खोली भी नहीं, तो और चिंतित हो गए इंद्रदेव। अब वापस गए स्वर्गलोक और कुछ षड्यंत्र रचाने लगे कि अब कुछ तो करना चाहिए, इनका पतन कराना ही चाहिए, इनके तपस्या को भंग करना ही चाहिए। देखिए, किसी भक्त को भी ऐसे सोचना चाहिए दूसरे के बारे में कि उसका पतन कराएं? ऐसे तो असुरी वृत्ति के लोग सोचते हैं, परंतु देखिए कि भौतिक आसक्ति का परिणाम कैसे होता है। भक्त होकर भी यदि हम भौतिक चीजों से आसक्त होंगे तो हमारे अंदर से ऐसी प्रवृत्ति बाहर आ जाती है कि कभी कभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भक्त ऐसे कैसे कार्य कर सकता है। अब इंद्रदेव जैसे व्यक्ति ऋषि मुनियों को पतन कराने के लिए कोई चेष्टा कर रहा है तो ये भी कोई छोटी बात तो है नहीं। और ऐसा नहीं है कि इंद्र केवल एक बार ऐसे कर चुके हैं, समय समय पर जब होता है तो इंद्रदेव कोई ना कोई परेशानी आ जाती है इंद्रदेव को, और वो ऐसे करने का प्रयास करते हैं। शिव जी के साथ भी तो ऐसे किया था, और इसलिए कामदेव उस सबक को कभी भूले नहीं, देवतागण भूले। तो खैर यहां पे उन्होंने कामदेव को बुलाया कि कामदेव तुम अपना काम करो और जाओ, और यहां इन मुनियों की तपस्या को भंग करो, न जाने ये क्या चाहते हैं, इतने शक्तिशाली हो रहे हैं, इनका तेज तो अपार है, अब न शायद ये आगे चल के मेरा ही पद छीन ले मुझसे। तो फिर वहां पे कामदेव चले गए। अब इंद्रदेव भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के स्थान को नहीं जानते थे, और वो सोचते थे कि नारायण ऋषि जो है वो मेरे ही स्तर में है, क्योंकि इंद्रदेव अपने राज्य से बहुत आसक्त हैं, इसलिए वो सोचते थे कि जो भी तपस्या कर रहे हैं इस उद्देश्य से कर रहे होंगे कि उनको मेरा राज्य चाहिए। बल्कि नर नारायण ऋषि के मन में कभी विचार भी नहीं आया, जो ऐसे आध्यात्मिक आनंद का लाभ या अनुभव कर रहे होते हैं, स्वाद ले रहे होते हैं, उनको ये सब त्रिदश आकाश पुष्पाय, त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, ये सब हवा महलों की क्या आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि या भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार का भोग, यहां तक कि स्वर्गलोक की प्राप्ति, ये भी सब एक हवा महल की तरह है। हवा में कभी महल हो सकता है क्या? नहीं। फिर भी उसी तरह से नंदन कानन वन इत्यादि ये सब मिथ्या सुख है। तो फिर भी इंद्रदेव सोच रहे थे कि ये भी मेरे जैसे ही है, आत्मवान मन्यते जगत, जो अपने अंदर अपनी जो भावना है उसका आरोप हम अन्यों पर लगाते हैं। यदि हम हमारे अंदर कोई दोष है तो इसी दोष को हम अन्यों में अधिक देखते हैं, और हम संशय करने लगते हैं कि शायद ये व्यक्ति इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि हमारे मन में ऐसे इच्छा होती है। और इंद्रदेव के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और इंद्रदेव के षड्यंत्र के द्वारा निश्चित ही भगवान का पतन तो नहीं हुआ, परंतु इंद्रदेव की अल्प बुद्धि या अल्प समझ का प्रदर्शन मात्र हुआ। और भगवान तो है बिल्कुल इन चीजों से आसक्त नहीं थे। तो खैर वहां पे कामदेव गए, अपने साथियों को ले गए, अपने साथ वसंत को लिए, और थोड़े अप्सराएं भी थीं स्वर्गलोक से, वो भी साथ में आए। अब वसंत ने क्या किया कि यह बहुत एक मादक रम्य वातावरण का निर्माण किया, जैसे वसंत ऋतु में होता है, बहुत रमणीय धीर समीर धीर हल्के हल्के पवन बह रहे थे, पुष्पों के सुगंध आदि, ताकि इनका इनकी तपस्या भंग हो जाए, ध्यान जो है इनका भंग हो जाए। ऐसे मादक वातावरण का निर्माण करने का उद्देश्य था कि कोई कामोद्दीपक भावना इनके हृदय में उत्पन्न हो जाए। और फिर कामदेव स्वयं अपने तीरों को छोड़ने लगे, जो अप्सराएं आई थीं वो सब नृत्य करने लगीं, वाद्य बजाने लगीं, गीत गाने लगीं। तो थोड़े समय के बाद ये सब आवाज सुनकर नर नारायण ऋषि इन्होंने अपनी आंखें खोल दीं, और खोलने के बाद देखा कि अरे ये क्या हो रहा है। जैसे ही आंखें खोलीं तो अप्सराओं ने और देवताओं ने देखा कि इनकी आंखों के तेज है, तो इससे शायद ये हमें भस्म भी कर दें। तो बहुत भयभीत होकर कांपते हुए वो खड़े रह गए नर नारायण ऋषि के सामने। तो नारायण ऋषि ने देखा कि ये लोग कांप रहे हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं, तो गुस्सा नहीं हुए, वो क्रोधित नहीं हुए। और भागवत में बताया है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उनके हृदय में तनिक भी कोई घमंड नहीं था। जैसे क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति तपस्या के बल पर अपने इंद्रियों को काबू में कर सकता है, और यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर स्वाभाविक है कि उसके मन में घमंड आ जाता है। और अंततः क्रोध आ जाता है। क्रोध क्यों आता है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है तो उसके हृदय में वो ऊंचा दिव्य स्वाद नहीं है, जिसके कारण आत्म संयम करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं रहता, वो भावनाएं जो हैं उसकी तृप्त पूरी तरह या खत्म नहीं होती हैं। इसलिए थोड़े से कुछ प्रेरित करने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जैसे विश्वामित्र मुनि के साथ जैसे हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत भक्ति विहीन तपस्या केवल भौतिक ही होती है, वो व्यक्ति को भौतिक स्तर से ऊपर उठाती नहीं है और उसे न तो कोई आध्यात्मिक लाभ मिलता है और न उसे कोई भौतिक सुख व भोग भी मिलता है। केवल इतना होता है कि वो क्रोधित हो जाता है, क्रोधित होकर उसकी जो योग अभ्यास से द्वारा अर्जित जो पूंजी होती है पुण्य की, वो क्षीण हो जाती है बस। तो विश्वामित्र मुनि ने बार बार इतना कुछ किया, पहले मेनका से किस तरह में आए वहां गड़बड़ हो गया, ऐसे बार बार आगे चल के अंततः उनको भ्रमर्षि का पद तो मिल गया। परंतु इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान की भक्ति न करने से कितना धोखा है। तो नर नारायण ऋषि की तपस्या तो ऐसी नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से शांत थे, इसलिए क्रोधित नहीं हुए। यद्यपि वो जानते थे कि इनका उद्देश्य क्या है, ये लोग क्यों मेरे पास आए हैं, कोई अच्छा उद्देश्य लेकर नहीं आए थे, फिर मुस्कुराकर उनसे कहा, मां भाई ही कि आप डरो नहीं, आप मेरे आश्रम में आए हैं, आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं, मेरे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए, आप मेरे अतिथि गण हैं। तो उनको प्रसाद खिलाया और तरह तरह के उनको अच्छे वस्तु वगैरह प्रदान किए और कहा कि देखिए ये मेरा छोटा सा आश्रम है और जैसे इस छोटे से आश्रम में आपका स्वागत न हो, आपकी सेवा न हो, तो मेरा आश्रम किस काम का, आप आए तब मेरे आश्रम की शोभा बढ़ी है। अब ये देवतागण अप्सरागण देखते रह गए, ये तो आज सोच रहे थे, चिंतित थे कि कहीं गुस्सा होकर ये ऐसे शाप दे देंगे, हमें भस्म कर देंगे, लेकिन यहां क्या देख रहे हैं कि नर नारायण ऋषि बड़े शांत हैं, हसमुख हैं, बड़े कृपालु हैं, कृपालु होकर बल्कि उनकी सेवा कर रहे हैं। तो फिर बहुत शर्मिंदा हो गए और नारद जी नारायण ऋषि फिर आगे उनसे कहने लगे कि देखो अब यहां जब आप आए हो तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई हानि हमसे नहीं पहुंचेगी, हमारा आश्रम आपकी सेवा के लिए है। उसी तरह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के मंदिर हैं, आश्रम हैं, तो यदि हमारे मंदिरों में आश्रमों में कोई आते नहीं है बाहर से लोग कृष्ण भावनामृत का लाभ लेने के लिए, तो मंदिर के निवासी भक्तों को लगता है कि हमारा आश्रम खाली खाली सा है। नर नारायण ऋषि बोल रहे थे कि हमारा आश्रम तो खाली खाली सा लग रहा है, आप आए हैं अभी तो हमारे आश्रम की शोभा बढ़ी है। तो उसी तरह से यदि हमारे आश्रमों में लोग आएंगे, कृष्ण भावनामृत प्रेरित होकर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी मंदिर में आते हैं उनका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए, उनको भी ऐसे लगना चाहिए कि ये वातावरण बहुत अच्छा है भक्ति के लिए। तो खैर फिर कांपते कांपते ये देवतागण अप्सरागण आदि प्रार्थना करने लगे उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, स्तुति करने लगे और वो कहने लगे कि यद्यपि साधारण व्यक्ति मनुष्य हो या देवगण सदैव भगवान की माया शक्ति के अधीन होकर भौतिक घमंड और क्रोध के शिकार हो जाते हैं, परंतु आप वैसे नहीं हैं, आप सदैव दिव्य स्तर पर स्थित रहते हैं और इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि हम देवतागण आपको समझ नहीं पाए। देवतागण जो होते हैं वो भगवान के आपके भक्तों के भक्ति के मार्ग में बहुत बाधाएं डालते हैं जानबूझकर, ताकि उनका पतन भक्ति मार्ग से हो जाए। फिर भी आपके जो भक्त हैं इतने शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा सुरक्षित होते हैं, ऐसे बाधाओं के सर के ऊपर अपने पैर डाल के वो आसानी से चले जाते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि देवताओं का जो स्थान है श्री कृष्ण की तुलना में कितना तुच्छ है। यद्यपि देवतागण भी भगवान के भक्त होते हैं, सेवक होते हैं, फिर भी वो कभी कभी इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत आसक्त होते हैं अपने ऐश्वर्य आदि से। जो वरदान वो अपने उपासकों को प्रदान करते हैं वो वरदान भी कृष्ण के द्वारा ही ये संभव होता है, फिर भी कभी कभी अपने ऐश्वर्य के द्वारा वो घमंडी हो जाते हैं, और इस घमंड के द्वारा फिर वो जानबूझकर ऐसे अड़चन या रुकावटें डालने का प्रयास करते हैं। और ऐसे आचार्य ने बताया कि वो कहना चाहते हैं कि आपके भक्त जब ऐसे रुकावटें डालने से विचलित नहीं होते हैं तो हम कितने मूर्ख हैं कि हम सोच रहे थे कि आप विचलित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, जब भगवान के भक्त विचलित नहीं होते हैं तो फिर भगवान स्वयं कैसे होंगे। तो देवतागण अपने आप के मूर्खता को कोस रहे हैं कि हे प्रभु हम बहुत मूर्ख हैं, आपकी महिमा को हम जान नहीं पाए। वैसे हम जो भी बंधन आपके भक्तों के रास्ते में डालते हैं उनके द्वारा आपके भक्तों का दृढ़ संकल्प मात्र बढ़ जाता है। जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब भक्त के जीवन में कोई बाधाएं आती हैं तो वो बाधाएं एक के बाद एक एक ऐसे सीढ़ी बन जाती है जिसका सहारा लेके भक्त भगवान के धाम की ओर प्रगति करता है। कितनी सुंदर बात जीव गोस्वामी पाद कहते हैं। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी बताया गया है, दूसरे अध्याय में ही, कि हे प्रभु यदि आपके भक्त इनका यदि पतन कहीं किसी कारण से हो भी जाए, आपके जो प्रेमी भक्त होते हैं, फिर भी इनका पतन साधारण व्यक्ति के पतन की तरह नहीं है, क्योंकि आप आपके भक्त की रक्षा सदैव करते हैं। इस तरह से देवगण प्रार्थना कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो कड़ी तपस्या में अपने आप को स्थित होते हैं ताकि वो हमारे प्रभाव से छूट जाए, परंतु इस भव सागर के सागर को पार करने के बाद वो किसी छोटे से गांव गाय के खुर में रहने वाले जल में वो डूब जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपने इंद्रियों आदि को वश में कर लेते हैं, भूख प्यास आदि को वश में कर लेते हैं, फिर क्रोध के कारण उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य में बताया जाता है कि दो प्रकार के अभक्त होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल इंद्र तृप्ति में लगे हुए रहते हैं, उनको किसी चीज की पड़ी नहीं है इंद्र तृप्ति के अलावा, तो वो तो देवता गणों के हाथों में अच्छी तरह से शिकार हो जाते हैं, आसानी से उनका पतन होता है। परंतु ऐसे भी लोग होते हैं जो देवताओं के चंगुल से छूटना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, परंतु भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं। ज्ञान योग अष्टांग योग ये योग वो योग उसका आश्रय लेते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग इंद्र तृप्ति करने वाले लोगों से भी ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि इतना सब तपस्या करने के बाद थोड़े से क्रोध के लिए फिर उनका सब खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जब देवतागण प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान नारायण ने एक आम की डाली से छोटा सा कुछ ले लिया, अंकुर आदि अपने जंघाओं से उन्होंने ऐसे कर दिया, और अपने दिव्य शक्ति से एक बहुत अद्भुत चीज हुई। सैकड़ों सैकड़ों अति सुंदर महिलाएं उत्पन्न हो गईं। जिनके अच्छे अच्छे वस्त्र थे, आभूषण थे, सब कुछ, और उनको देखकर देवगण जो है, विशेषकर अप्सरागण सोचने लगे हम लोग कितने कुरूप हैं, ऐसा सौंदर्य तो उन्होंने कभी देखा नहीं था। इनका मन तो बिल्कुल डावा डोल हो गया। ये जो महिलाएं थी जो उत्पन्न हुई, उनके शरीर का गंध, उनका सौंदर्य, उनके बोलने की पद्धति, तो ये सारे देवगण, इनका सर चकरा गया और वो देखते रह गए। और नर नारायण ऋषि भी सोच रहे थे कि हाँ, ये लोग मुझे, मेरा पतन करने के लिए ऐसे आए थे, तो कितने मूर्ख थे ये लोग। तो भगवान ने उनके ऊपर बड़ी कृपा की और फिर नारायण ऋषि ने उनसे कहा कि इनमें से किसी एक को आप चुनो। फिर देवगणों ने ओम कह के उर्वशी नाम के एक महिला को चुना और वह उर्वशी जाके फिर इंद्र की सभा की आभूषण बन गई। इसलिए उर्वशी का नाम भी आप यहां देखेंगे इधर उधर, होटल का नाम भी उर्वशी है क्योंकि उर्वशी उत्पन्न हुई नारायण ऋषि के द्वारा ही। और ऐसे ये अन्य जो अप्सराएं थी जो वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो देख रही थी हम भी वरदान चाहते हैं, क्योंकि देवताओं को तो उन्होंने वरदान दे दिया कि आप इनमें से किसी को चुनो और इंद्र के सभा में ले जाओ, परंतु अप्सराओं के लिए क्या था। तो जब भगवान ने उनसे पूछा कि कोई वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। तो नारायण ऋषि को ऐसे प्रतीत हो रहा कि अब गुस्सा होने वाला है, क्योंकि वो तो तपस्वी का जीवन बिता रहे थे, अब ये अप्सराएं स्वर्ग लोक से आके कहती हैं हम आपके दासी बनना चाहते हैं, तो कैसे ये हो सकता है। उस समय नर वहां पर थे, नर ने उनको शांत किया और फिर नारायण ऋषि ने उनसे उत्तर दिया कि हे देवियों, इस अवतार में या इस जन्म में मैं तो केवल एक तपस्वी हूं, इसलिए आपको मेरी सेवा करना यह अनुचित है, परंतु अगले अवतार में जब मैं आऊंगा तब आपको मेरी सेवा करने का खूब मौका मिलेगा। जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब आपको यह मौका मिलेगा। तो जब नारायण ऋषि फिर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय, दो तरह की गोपियां थीं। एक तरह की गोपियां वो थीं जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक वृंदावन से ही आई थीं, और दूसरी वो थीं जो इस भौतिक सृष्टि में ही साधन भक्ति आदि करके प्रकट हुए थे, और वो इन नित्य सिद्ध गोपियों का संग करने के बाद वो भी पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गईं और फिर वो भी भगवान के साथ भगवान के धाम में जा पाईं। तो जो ये साधन सिद्ध भक्त हैं जो कि आगे चल के गोपियां बनी, उनमें से कई श्रेणियां हैं। जैसे कि दंडकारण्य के वन में जब श्री रामचंद्र थे, वहां के ऋषि जो थे वो भी श्रृंगार रस में श्री रामचंद्र के साथ सेवा करना चाहते थे। राम ने कहा मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया है, ये तो संभव नहीं है, और आप भी पुरुष के देह में हो तो संभव नहीं है, परंतु अगली बार कृष्ण लीला में आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो ये दंडकारण्य के ऋषि अगले जन्म में गोपियों के गर्भ से जन्म लेकर स्वयं गोपी बने और उनका जीवन सार्थक हो गया। साथ साथ ऐसे कई श्रेणियां हैं, जो मूर्तिमान वेद उपनिषद थे वो भी गोपियां बन गईं। जब श्री राम मिथिला गए थे स्वयंवर के लिए सीता देवी के, तो मिथिला के कई महिलाएं थीं, जितनी भी नारियां थीं उन्होंने भी ऐसे भाव रखा भगवान के प्रति, उनको भी गोपी बनने का अवसर मिला। जब श्री रामचंद्र यज्ञ संपन्न कर रहे थे, जबकि दूसरी बार उन्होंने सीता देवी को वनवास में भेजा था, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पत्नी का होना आवश्यक होता है गृहस्थ के लिए, तो सीता देवी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने सोने की मूर्ति बनाई सीता देवी की। तो सोने की मूर्तियों, इनको भी अवसर मिला गोपियों बनने का। तो ऐसे अनेक श्रेणियां हैं, उनमें से ये भी एक श्रेणी है। कि जो अप्सराएं यहां पर नर नारायण ऋषि को की तपस्या को भंग करने के लिए आई थीं, उनको भी ये मौका मिल गया। तो खैर, इंद्रदेव के इस को जाकर वापस उन्होंने खबर दे दी कामदेव आदि ने, और सारे स्वर्गलोक के निवासी राह देख रहे थे इनकी कि क्या होगा नीचे। और जब खबर आई वापस तो इंद्रदेव बहुत आश्चर्यचकित हो गए और भयभीत भी हो गए। लेकिन इंद्रदेव की सभा में उर्वशी भी आ गई थी। तो इंद्रदेव के इस कार्य से हम जान सकते हैं कि भौतिक वृत्ति कैसे होती है, कि भगवान अपने ही सृष्टि का निर्माण करते हैं और सृष्टि का के वो अधीन नहीं रहते हैं कभी भी, वो किसी भौतिक चीज का भोग नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने तात्पर्य में कि जो हलवाई होता है, जो मिठाइयां आदि बनाता है, वो कभी उसके मन में मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे कहावत है। क्योंकि दिन रात वो मिठाइयां बनाते बनाते मिठाइयां देखने से भी उसको अच्छा नहीं लगता, खाने की बात तो दूर है। तो ठीक उसी तरह से भगवान तो ऐसे भौतिक सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, तो भले भौतिक चीज से वो कैसे आकर्षित हो सकते हैं। तो नर नारायण ऋषि ने अपने अंतरंगा शक्ति से ये उत्पन्न कराया, अपने दिव्य योग शक्ति के बल पर इन अप्सराओं को प्रकट करा के ये संदेश भेजा कि देखो तुम कैसे मुझे आकर्षित कर सकते हो भौतिक सृष्टि के द्वारा। ये साधारण जीव आकर्षित हो सकता है, परंतु मैं नहीं आकर्षित हो सकता। तो ऐसे ही नर नारायण की लीला यहां पर इसी स्थान में बद्रिक आश्रम में हुई। श्रीमान नर नारायण ऋषि की जय। तो वैसे तो समय हमारे लिए असीमित नहीं है, और कल रात भी सुबह सुबह जाना है हरिद्वार के लिए। तो यदि आपके कोई प्रश्न हो तो एक या दो प्रश्न लेंगे, फिर थोड़ा कीर्तन करेंगे। हालांकि प्रसाद के लिए थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन अच्छे से कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। अभी स्थान भी अच्छा है, गर्मी भी है अंदर, कोई ठंडी नहीं है। कोई प्रश्न है किसी के? हाँ जी। हाँ, कौन? घंटा कर्ण
का पिछले जन्म सहस्त्र भाव या सहस्त्र कवच बोलते उसको, उनको मानने के लिए नर नारायण आए थे, ऐसे भी बताते क्या?
वैसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग समय ऐसे लीलाएं होती हैं। स्थल पुराणों में भी बहुत सी बातें होती है, और यहाँ के पंडितों से बात करने से भी और बहुत सी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें पता चलती हैं। हो सकता है। और कोई बात है? और कोई प्रश्न है? हाँ, नर नारायण ऋषि एक अवतार है या दो अवतार है? एक अवतार है, लेकिन दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, नर और नारायण। लेकिन एक की तरह उनसे उनका उल्लेख होता है, एक की तरह एक अवतार मानते हैं। वैष्णव भक्त केदारनाथ क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, शिवजी महान वैष्णव हैं। परंतु अक्सर जब लोग जाते हैं शिवजी के पास, इस भावना से नहीं जाते कि शिवजी परम वैष्णव हैं, इसलिए समस्या होती है। क्योंकि अन्य लोगों में भी एक भावना निर्माण हो सकती है, वैष्णव लोग जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए, और जो नए नए भक्त हैं वो भी जाएंगे, जबकि उनको पता नहीं होगा कि शायद शिव जी का स्थान कैसा है, शिव जी के प्रति हमारी भावना कैसे रहनी चाहिए। ठीक है। हाँ जी,
जब महाभारत चालू था, यानी युद्ध शुरू था, तो व्यासदेव ने
संजय को भी पिटाया था और उन्होंने पकाया था, तो वो ये दोनों में क्या
हाँ, व्यासदेव जी को उन्होंने दिखलाया था संजय को। संजय तो व्यासदेव महाभारत की घटनाओं को, खास करके युद्ध की घटनाओं को देख रहे थे, परंतु व्यासदेव जी ने तो समस्त महाभारत की रचना की, शुरुआत से लेकर अंत तक। जो दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान की उन्होंने, वो तो केवल युद्ध के लिए था, जो 18 दिन युद्ध हुए उसके बारे में। ठीक है, हाँ हाँ, वैसे तो एकादशी तक कथा चलती हो सकता है तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में जाएंगे तो जो भी छोटी चीजें बची हुई हैं उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय अब नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो अभी कीर्तन करेंगे ताकि अच्छा सा, फिर कथा के बाद कीर्तन तो होना चाहिए, ये हमारे युग धर्म है अंततः। कई सूचनाएं हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.